तो क्रिया, क्रिया किसको कहते हैं? क्योंकि आख्यात और नाम चार प्रकार के शब्द हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। उसमें जो नाम और आख्यात थे उनके इन्होंने परिभाषाएं बताई हैं कि वो क्या है। तो आख्यात किसको कहते हैं बलदेव जी?
क्रिया,
जैसे
देवदत्त गच्छति, गच्छति जो आख्यात क्रिया।
इसकी परिभाषा क्या है आख्यात की?
भाव।
हाँ बोलिए बोलिए।
प्रधान आख्यात।
हाँ, भाव प्रधानम आख्यातम। भाव का क्या अर्थ है? भाव शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, उसका अर्थ क्या है? अभी तो बताया था भाव का अर्थ क्रिया ही है। भाव प्रधानम आख्यातम यानी क्रिया प्रधान आख्यात है, वो तिगंत है। तो ये हो गया। और नाम किसको कहते हैं जी? अभिषेक जी, जैसे जैसे कैसे समझाएंगे इसको आपको? यदि दोनों हो साथ में, यदि दोनों ही साथ में बोलना हो नाम और आख्यात, तो कैसे समझेंगे कि दोनों में कौन गौण है और कौन प्रधान है?
नाम और आख्यात में आख्यात प्रधान होता है।
क्यों?
क्योंकि जो क्योंकि जो नाम होता है वो क्या होता है कि आख्यात क्रिया के लिए होता है, क्रिया वो करने के लिए, क्रिया के प्रधानता होने के।
भाष्यकार ने क्या कहा इस विषय में?
भाष्यकार ने तो
नाम क्या होता है, कारक हो गया सीधा। तो कारक के बारे में और क्रिया के बारे में भाष्यकार ने क्या कहा है कि हाँ वो बात कहो ना, क्रिया को जो बनाने वाला है वो कारक है। हाँ, क्योंकि क्रिया को वैसे तो बनाने वाला है वो, किंतु वो प्रधान है क्योंकि वो उसके बिना कुछ भी नहीं कर पाएगा, निष्क्रिय है। अगर क्रिया कोई ना करे तो किसी की कोई प्रधानता दुनिया में नहीं है। जहाँ दोनों मिल जाएं तो वहाँ क्या करें? वैसे तो इतरे त्रय आश्रय है, एक दूसरे के आश्रित हैं, और भाष्यकार के अनुसार इतरे त्रय आश्रयाणी कार्याणी, किंतु यहाँ तो हो रहा है। और इतरे त्रय आश्रयाणी कार्याणी अपि तद यथा, हिंदी में बता दीजिए। वो यहाँ थोड़ी घटेगा। इतरे त्राश्रयकारी होते हैं ना कि नोर, हाँ जमीन पे जो है, हाँ सक्तम नावम बहती, और तो दोनों काम एक दूसरे को होता है। जो तीन त्रिपाई खड़ी होती है, त्रिस्थूणा जो होती है, वो तीनों मिलके ही कार्य करते हैं। अब लगा लें गाड़ी में तीन पहिए हैं, थ्री व्हीलर है, एक पहिया निकल जाए तो क्या होगा? तो इतरे इतरे आश्रय से कार्य चले, तो इतरे इतरे आश्रय कार्याणी होते भी हैं और कहीं कहीं नहीं भी होते। तो ये दोनों इतरे इतरे आश्रय हैं, क्रिया की भी कोई महत्ता नहीं है और कारक की भी कोई महत्ता है। जब दोनों मिलते हैं तो वाक्य बनता है, जब वाक्य बनता है तो कोई कार्य सुस्पष्ट होता है। तो इसलिए दोनों एक दूसरे जुड़े हैं, किंतु वार्ता इतनी है, अगर दोनों को एक साथ कहना हो गौण और प्रधान में तो कौन है, तो हमेशा क्रिया की ही प्रधानता है, ये इतना ही कहना चाह रहे हैं। तो ये बात सुस्पष्ट हुई। अब आगे जो विषय चलेगा, किसी को कुछ पूछना है कल के पाठ में? हाँ बोलिए।
पंक्ति आई थी पूर्वा परिभूतम भावम आख्यातेन आदृष्टे विजयति पचति इति उपक्रम प्रवृत्ति अपवर्ग पर्यंतम
जी।
ये मूर्तम सत्व भूतम सत्व नामभिर वज्य पक्ति इति
जी,
थोड़ा स्पष्ट
और बोल देते हैं। पूर्व और अपर, पूर्वम च अपरम च पूर्वापरम, पूर्वापरम ये भूतम पूर्वापरिभूतम, ची प्रत्यय यहाँ हो गया है। तो पूर्व और अपर को मिला के जो प्राप्त हुआ है, तो पूर्व क्या था, कल बात चली थी कि एक क्रिया है कि भाई देवदत्त है पचती, तो इस पचती से पूर्व कितनी क्रिया विनियोग हुई, आनियति प्रक्षालयति स्थापयति, बहुत क्रिया इसमें साथ में विनियोग हुई है, तो ये तो पूर्व हो गई। उसके बाद में जो आगे क्रिया चली, अग्नि पे रख दिया है, गलने लगा है, पचने लगा है, और जब तक वो पक गया है, पाक है संजात है, जब तक ये नहीं हुआ, तो पूर्व पर बहुत क्रिया मिला के, तो इसी को आख्यात से कहा, इसी भाव मानक क्रियाम आख्याते न आचष्टे, आख्यात से कहा। सुस्पष्ट, वही तो सारी क्रिया है, पूर्व और अपर तो दोनों को मिला के हो गया ना,
पूर्व पहले वाली,
हाँ बाद वाली, बीच वाली तो अपने आप ही आ गई, वो पहले है, ये बाद में जो बीच की गणना तो अपने आप ही आ गई इसमें, ये सारा तो उसमें अपने आप ही आएगा। पूर्व तो एक सीमा बता दी कि भाई जहां से, अब वो सीमा किसी के लिए ये नहीं कि वही होगी कि बटलोई लाना है, किसी के लिए वो वहां से देखेगा भाई जब पानी चढ़ा दिया, कोई वहां से भी देख सकता है उसको, कि जैसे चाहेगा वो वैसे बोलेगा, किंतु कोई चाहे कि भाई मैं वहीं से बोलूंगा, दाल लाने से बोलूंगा, तो उसमें भी कोई समस्या नहीं है। तो व्रजति अब इसी में घटाते हैं, देवदत्त व्रजति ग्रामम व्रजति, देवदत्त गांव को जाता है, जो देवदत्त जो गांव को जाना है तो उससे पहले क्या क्या करेगा, वो वस्त्र भी बदलेगा, कुछ खाएगा पिएगा, पैसे भी लेगा, बहुत सी क्रियाओं को करेगा। तो जब वो बहुत सी क्रियाओं को करेगा, फिर बस में बैठा, ट्रेन में बैठा, फिर वहां जब तक वो ग्राम की प्राप्ति नहीं होती तब तक वो कार्य चलता रहेगा। तो देवदत्त व्रजति कहने से ये अवांतर क्रिया भी और पूर्व क्रिया भी दोनों का ग्रहण होता है, इसी का नाम आख्यात है। पूर्वापरिभूतम भावम आख्यातेन आचष्टे व्रजति पचति, पचति सुस्पष्ट हो ही गया। वैसे तो सारा सारा कुछ मन में ही होता है, तो वो पहले शब्द उत्पत्ति कैसे होती है, कौन बताएंगे, बोलिए।
आकाश वायु प्रभव शरीर
ये तो आपने वो बता दिया, नमस्ते माता जी, तो युक्त है नमस्ते माता जी। ये शब्द का विज्ञान है, ये हमारे यहाँ जो मैं कहता हूँ कच्चे एक का बच्चा जिस विद्या को जानता है उसको आइंस्टीन लेवल का वैज्ञानिक भी नहीं जानता, ये पक्की बात है। हम किसी वैज्ञानिक से पूछे कि आपने बचपन से लेके अभी तक खरबों शब्द बोल दिए, हमने भी बोले, किंतु ये शब्द उत्पन्न कहाँ से हो रहे, क्या ये विज्ञान का विषय नहीं है, 100% विज्ञान यहीं से प्रारंभ होता है, किमर्थम कथम, तो इसका उपाय क्या, ये कहाँ से पैदा हो रहे हैं शब्द, ये ऋषि ने नहीं बताया, क्योंकि समाधि के बिना बैठे विद्या ही नहीं सकती। तो आत्मा बुद्धि से जुड़ी, बुद्धि मन से जुड़ा, मन इंद्रियों से जुड़ा, वो प्राण को उसने प्रेरित किया, नाभि के नीचे से प्राण उठा, छाती में पहुंचता हुआ आया, ये शब्द का विज्ञान। मैं बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में इस बात को उठा चुका हूं, बताइए जिन चीजों का आप दैनिक व्यवहार में प्रयोग कर रहे हैं वही आपको ये नहीं पता कि उत्पन्न कहां से हुआ, हम कैसे मान लें कि आप इतने बड़े वैज्ञानिक हैं। और हमारे यहाँ पहली कक्षा का विद्यार्थी, मतलब माता ही वैज्ञानिक आए, वही पढ़ा देती है इस बात को, महर्षि के शब्दों में। तो ये है। अब आत्मा बुद्धिया समित्यर्थान, अब इसको आप जोड़ लो, सारी क्रिया मन में हो गई, नहीं होगी, किंतु वही है कि आप लेना कहां से चाह रहे हैं, वो आपके ऊपर है। तो आत्मा बुद्धिया समित्यर्थान मनोयुंगते विवक्षया, तो जो भी आप सब्जी बनाना प्रारंभ कर रहे हैं, चावल बनाना, तो पहले तो मन में ही बन रहे हैं, उसमें तो कोई संदेह है नहीं। अब ये है कि कोई कहे कि मैं मन से लूंगा तो उसको हम नहीं रोक सकते, कोई कहे मैं तो बाल्टी उठाने से लूंगा, चावल जब पकने रख दिए तब से लूंगा, जैसे है वो तो आपकी बुद्धि का अस्तर है कि आप उसको कहां से देख रहे हैं। तो यहां तक बात समझ में आई। इति उपक्रम प्रवृत्ति अपवर्ग पर्यंतम, उपक्रम समझ में आ गया, जहां से क्रिया प्रारंभ की और अपवर्ग जहां क्रिया समाप्त हुई है, तो उसी को हम क्रिया को आख्यात से कहते हैं, यथा देवदत्त पचति, देवदत्त गच्छति, देवदत्त व्रजति इत्यादि। तो किसी को कोई संदेश में उप का तो ये है जी, उप वृद्धिअर्थम क्रमते इति उपक्रम, जो किसी वृद्धि के लिए जो काम प्रारंभ किया जाता है उसका नाम उपक्रम है, क्योंकि प्राय निरुक्त में और वेद में तो उपकार्थ वृद्धि है, समीप भी अर्थ ऐसा नहीं कि नहीं है, तो यहाँ समीप अर्थ लेना है तो उप सामीप्यर्थम क्रमते इति, लक्ष्य क्या है कि चावल चाहिए, चावल खाने हैं, तो उसकी समीपता की प्राप्ति के लिए चावलों की जो जो क्रिया करनी है वो हो जाएंगे, या उसकी भोजन की जो वृद्धि के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए जो जो क्रिया करनी है वहां से जहां से आरंभ करता है उसका नाम उपक्रम है। उप वृद्ध्यर्थम क्रमते या सामीप्याय क्रमते इति उपक्रम। वो तो व्याख्या कर रहे हैं उसी की, पूर्व परिभूतम की ही व्याख्या कर रहे हैं। ये पूर्व परिभूतम क्या है, उपक्रम से लेके और अपवर्ग पर्यंत, वो तो व्याख्या है उसकी। तो अपवर्ग की व्युत्पत्ति तीन करी दी थी, एक तो अपवर्ग के अर्थ फल की प्राप्ति भी है, जैसे हमारा जीवन है ऋषियों के वेद के अनुसार मोक्ष के लिए मिला है, जब हमें वो मिल गया तो हमारा अपवर्ग यानी मोक्ष हो गया, बंधनों से छूट गए। दूसरा अपगत वर्ग अस्मात, जीवन जीना है तो मेरा तेरा अपना पराया ये छोड़ के जिएंगे तो ज़्यादा सुखी रहेंगे, वो भी उसका नाम भी अपवर्ग है, यही मोक्ष हो जाएगा जीते जी। और अपगत वर्ग अविद्यमान है पवर्गोस्मिन, जहाँ पाप पुण्य फल ये सब नहीं है उसका नाम अपवर्ग है, ये निर्वचन भी हो सकता है, ये नहीं कि किसी ने ऐसा किया है, पर क्योंकि जो वैयाकरण है वो केवल अभी निरुक्ति सिखाएगा, केवल शब्द को एक प्रकार से नहीं देखते हैं, अनेक प्रकार से उसको देखते हैं, एक एक शब्द के ये खुद ही बताएंगे अनेक अर्थ भी होते हैं। तो सुस्पष्ट हो, आगे चले। अच्छा ये अच्छा, मूर्तम सत्यभूतम सत्व नाम भी, मूर्तम नाम है जो मूर्त हो गया है, मूर्ति और मूर्तम में अंतर नहीं है, इसका अर्थ है जो घनीभूत एक प्रकार से हो गया है, जो कुछ स्थूल रूप में आ गया, जैसे पाक संजात है या पक्ति और व्रज्जा, इन्होंने उदाहरण भी दिया। पचाना, पचाना ये क्रिया नहीं हो रही है, केवल पचाने मात्र को कहा जा रहा है, जैसे देवदत्त भोजनम करोति, देवदत्त जो है भोजन को कर रहा है, तो भोजन को क्रिया चल रहा है, और देवदत्त भोजन खा रहा है और देवदत्त भोजन खाता है, दोनों में अंतर है या नहीं? देवदत्त भोजन खाता है और देवदत्त भोजन खा रहा है, दोनों में क्या अंतर है व्याकरण की दृष्टि से? इस काल में आख्यात का प्रयोग हो रहा है, और जब वो खाता है, भाई ये तो जीवन का एक क्रिया है कि खाता है, कब वर्तमान में खाता है, भूत में खा लिया खाएगा, उसका संबंध नहीं है। तो देवदत्त पचती, देवदत्त पका नहीं रहा है, पक्ति पचाना मात्र है, देवदत्त से पक्ति पचनम वर्तते, देवदत्त का पकाना है, वो पका नहीं रहा है, किंतु ये भी तो एक क्रिया है, पचाना तो आया ना यहाँ, किंतु ये क्रिया वैसी नहीं है, ये क्रिया कुछ घनीभूत है, वैसी नहीं है आख्यात वाली, किंतु है तो ये भी एक प्रकार से क्रिया है, किंतु ये क्रिया क्या है, द्रव्य के समान हो गई है, मतलब जैसे हम द्रव्य की गणना हमने किसमें की, सत्यनाम भी, क्योंकि द्रव्य की पहचान एक और जहां सुबंध आता है, तो व्रज्या पक्ति आदि में सुबंध आता है, कैसे आता है, कृतद्धित प्रातिपदिक संज्ञा होगी और उसके बाद में सुबंध की उत्पत्ति होगी, प्रातिपदिक या प्रातिपदिकास से, तो जब सुबंध की उत्पत्ति होगी तो किंतु लगता तो ये ऐसा ही है, पचाना पका रहा है, ज्यादा अंतर नहीं लग रहा देखने में, किंतु क्योंकि ये कृत अभी तो भाव द्रव्यवत भवति, कृत से कही गई जो क्रिया है वो द्रव्य के समान मान ली जाती है, तो इसलिए इसी को यहाँ कह रहे हैं कि इसको फिर किस रूप में माने, कि थोड़ा उससे घनीभूत माने, मतलब सज्जित चीज को माने, वहां तो साध्य था और यहाँ एक प्रकार से साध्य की है, सिद्ध अवस्था तो पूरी नहीं है पर लगभग है, क्योंकि सिद्ध अवस्था तो पूरा फिर द्रव्य हो जाएगा, कुछ है ना, भाव तो यहाँ है किंतु द्रव्यवत है, तो पूरी सिद्ध अवस्था को तो हम यहाँ नहीं, वैसे कुछ लोग पूरी सिद्ध अवस्था भी मानते हैं, पर ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि सिद्ध अवस्था तो पूरा द्रव्य हो जाएगा, फिर कृत अभी तो भाव द्रव्यवत भवति, वत प्रत्यय तो तब आता है कि उसके कुछ सदृश हो, पूरा न वती प्रत्यय काम काय में आता है, तेन तुल्यम क्रिया। हाँ
तो द्रव्यपद भी आता है, सिद्ध अवस्था भी
आता है, द्रव्य के समान हो जाता है। द्रव्य के समान कैसे हो जाता है, कि देवदत्त के समान कोई व्यक्ति है, ब्रह्मदत्तम ब्रह्मदत्तम आ ब्रह्मदत्तोयम इति गम्यते, महाभाष्यकार का वचन है। जो कोई ब्रह्मदत्त नहीं था, उसको किसी ने कहा कि ब्रह्मदत्तोयम, चेहरा और आकृति मिल गई है किंतु ब्रह्मदत्त तो नहीं है, ब्रह्मदत्त के वो समान है। ऐसे ही ये द्रव्य के जैसा हो जाता है, क्योंकि कुछ ये घनीभूत में हो जाता है, क्रिया लगभग समाप्ति है, और वो नित्य कर्म में होता है, पचाना तो एक नित्य कर्म है ना, पक नहीं रहा है, किंतु पचाना सीधा द्रव्य को भी नहीं कहा जा रहा, गमन जाने को नहीं कहा जा रहा, इस समय जा नहीं रहा है किंतु गमन हमारे जीवन में है, तो उस एक स्थिति को बता रहे हैं। अंग्रेजी में कहेंगे एक कंडीशन है, दिस वॉल इज पेंटेड, तो ये दीवार जो है पेंटेड है, तो एक अवस्था को बताया गया कि ये भी पेंट, इसको पेंट किया नहीं जा रहा है, ये पहले से पेंटेड है, तो ऐसा है उसी को बता रहे हैं। तो वो ऐसा किस रूप में है, क्योंकि चार ही चीजें हैं, या तो नाम है, या आख्यात है, या उपसर्ग है, या निपात है, समस्या वहां रही इसलिए व्याख्या की जा रही। तो उन चार में से इसको कौन सी कोटि में माने, कौन सी में माने, नाम तो सीधा दिखाई नहीं दे रहा, सीधा तिगंत भी दिखाई नहीं दे रहा, उपसर्ग निपात तो है ही नहीं, तो फिर किस में माने इसको, तो उस जैसा माने, क्योंकि ये भाषा में शब्दों का प्रयोग है, उसी को दिखाने के लिए ऐसा कह रहे हैं कि मूर्तम सत्यभूतम सत्यनाम भी, सत्यभूतम भी इसलिए जोड़ा, सत्वम इव प्राप्तम, जैसे द्रव्य है ना वैसा लगभग वो प्राप्त होता है, तो उसको काहे में गिने, क्रिया में ना गिने, द्रव्यों में ही गिने, इतना मात्र यहाँ है ये बताने के लिए, क्योंकि अब ये नहीं बताते तो जिज्ञासा बनी रहती कि इसको किस में गिने, तो उन्होंने सुस्पष्ट कर दिया, बाकी दोनों के बीच की स्थिति है। हाँ, पचन मात्र को कहता है, हाँ समुदाय को पचन मात्र को कहता है, इसी रूप में है वैसे तो, क्योंकि पचन मात्र को कह रहे हैं, ये ना तो पूर्व को कह रहे हैं ना अपर को कह रहे हैं, हाँ ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि पूर्वापरि भूतम वो यहाँ नहीं है, पूर्वापरि भूतम से अलग है, तो उसके समुदाय मात्र को घनीभूत तो तभी होगा जब कोई चीज इकट्ठी की गई है, तो ना तो ये उसको कह रहे हैं पूर्व भाग को, ना ये अपर भाग को कह रहे हैं, एक स्थिति मात्र को बता रहे हैं पचाने में, और पचाने में जो जो स्थिति होती है बाल्टी उठाने से लेकर पचाने तक, वो सब इसके अंतर्गत मान लीजिए, हाँ बस वही है, ये जाना है, जाने के अंदर जितनी क्रिया होती है तो गमन मात्र को कहेगा, कपड़े पहनना है, पैसे लेना है, बस में बैठना है, उसका कुछ नहीं, एक प्रकार से सामान्य रूप से कह रहा हूँ, सिद्ध अवस्था को ही कहेगा, गमन मात्र को कहेगा, सामान्य रूप से विशेष रूप से नहीं। तो अब आगे चलें, तो आज जो चलेगा, क्योंकि आज हम सोच रहे हैं मंत्र कल से लिखा हुआ है, इस पे भी कुछ लगाएं, तो अब थोड़ी भूमिका प्राय नहीं करते हैं, भूमिका लगभग हो गई है, वैसे भूमिका से शायद थक भी गए हो सुन सुन के प्रवचन के रूप में। अच्छा तो अब जो आगे आने वाला विषय है, एक बात मैंने बहुत महत्वपूर्ण कही थी, वो याद रखने वाली है, कि याज्ञ देवते पुष्प फले और देवता अध्यात्मे वा, ये बात इतनी महत्वपूर्ण है, आप अपने जीवन को आध्यात्मिक बनाने चाहते हैं तो ये उसमें घटेगी, व्यावहारिक बनाना चाहते हैं तो उसमें घटेगी, आप अपने आप को वेद का वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं तो उसमें घटेगी, तो ये किसी को ऐसा कोई है जिसको ये समझ में ना आई हो, क्योंकि ये यही सारी चीज़ों को संध्या के मंत्र को ये विद्या खोलेगी, आप फिर से समझा देते हैं, आप इसको लिख लीजिए इस विषय को, क्योंकि ये विषय ऐसा है संध्या में आप घटाना प्रारंभ कर लोगे, दो चार दिन के बाद ही जब ये चीजें खुलेंगी। ये निरुक्त की है पंक्ति, पूरी पंक्ति बता देता हूं मैं, आगे आई जाएगी वैसे, इसमें देवता का ज्ञान, देखिए मंत्रों में क्या है, मंत्र में क्या है, देवता है, और देवता क्या है, महर्षि दयानंद जैन के अनुसार मंत्र का विषय है। देवता यहाँ पौराणिक कल्पना वाले देवता नहीं है, देवता एक विज्ञान का नाम है, देवता एक पदार्थ का नाम है। ऐसे लगभग अगर आप पूरे छोटे और बड़े शक्तियों को देखेंगे वेद में तो लगभग 300 के आसपास है, यानी 20,379 मंत्रों के 300 के आसपास। वैसे घटना करेंगे तो कितने हो जाएंगे, मैं मध्य मार्ग से बता रहा हूँ। तो ये एक पदार्थ है, अर्थात वेद के 20,379 मंत्रों में इन पदार्थों का पूरा विज्ञान खोला हुआ है। ये कैसे पैदा हुआ, क्या करता है, शरीर में कहाँ है, द्युलोक में कहाँ है, अंतरिक्ष में कहाँ है, और इससे हम क्या लाभ ले सकते हैं। ये सब ऊर्जा के एक प्रकार से केंद्र भी हैं, ये सृष्टि को चला भी रहे हैं, निर्माण भी कर रहे हैं, और परमात्मा अंतिम देवता है। तो वो देवता का ज्ञान कैसे करें कि कौन सा देवता किस मंत्र का है? एक तो ये लिखा हुआ है, अभी हम ऋग्वेद आज मिल गया सबको, हाँ तो ऋग्वेद लेकर आएंगे तो इस मंत्र को देखेंगे, हो जाएगा। तो ये जो देवता है, ये देवता का निर्वचन जो निरुक्तकार ने किया, देवो दानात्वा, जो दान देता है वो देवता है। ये लौकिक अर्थ में भी घटता है, आध्यात्मिक में भी घटता है, और वैदिक वैज्ञानिक अर्थ में भी घटता है। लोक में किसी ने दान दिया अच्छे कार्यों के लिए तो वो देवता है, अर्थात वो उस काल में जैसे सूर्य एक देवता है, वो सूर्य रश्मियों के माध्यम से प्रकाश दे रहा है, चंद्रमा दे रहा है, बादल वर्षा दे रहे हैं, अनुग्रह है, लोगों का जीवन चल रहा है, संस्थाओं का जीवन दान से चलता है। तो जो कोई दान दे रहा है तो वो देवता के स्थान पर उस काल में है। दूसरा, सूर्य देवता क्यों है, दानात, अगर सूर्य एक महीने ना निकले तो क्या होगा, सब इतने असुर। सूर्य क्या है, देव शक्ति। ये वेद को समझने के लिए दो चीजों को समझना 100% आवश्यक है, इसमें छूट नहीं है। पहला तो देव, दूसरा असुर। असुर के पर्यायवाची हैं, देवताओं के पर्यायवाची हैं सूर्य, चंद्रमा, वायु, ये जितने हैं तीन, ये सब देवताओं के पर्यायवाची शब्द है। देवता तो एक मूल शब्द हो गया, उसके पर्यायवाची कौन कौन से हैं, उसके नाम जो हैं वो सब सूर्य चंद्रमा आदि। असुर के पर्यायवाची हैं राक्षस, राक्षस जिसको बोलते हैं, वो वैसे नहीं जैसे हम सुनते हैं देखते हैं, वो एक प्रकार के शक्तियां हैं, वायरस कह सकते हैं, जीवाणु विषाणु कह सकते हैं। तो पिशाच हो गया, असुर हो गया, रक्ष हो गया, यातुधान भी उनका एक नाम है वेद में जो सभी के लिए आता है। तो ये उसके पर्यायवाची हैं। तो हाँ, क्योंकि दुष्ट मनुष्य वो क्यों बना, भगवान ने सबको बिल्कुल ठीक आदि सृष्टि में तो वातावरण शक्ति तक कुछ ही लोग थोड़े बहुत हुए होंगे, पहले भी गांव में कितने अच्छे लोग होते थे हम तो, क्योंकि गांव में रहे, बहुत धर्म होता था गांव में, बहुत एक दूसरे का सहयोग होता था। तो वही गाँव वाले आज क्यों बदल गए, तो गाँव वालों का भी उसमें दोष नहीं। व्यक्ति जो सुनता है, जो बोलता है, जो खाता है, जो देखता है, उससे प्रभावित होता है। उससे वो प्रभावित क्यों होता है, क्योंकि उसका संस्कार पड़ता है। जब वो संस्कार पड़ता है तो वो संस्कार अगर दृढ़ पड़ता है तो जिसका दृढ़ पड़ता है वही कार्य, संस्कार यदि आसुरत्व तत्व का है तो रजस और तमस बढ़ जाएंगे। पूरा विज्ञान है, इसमें कोई कल्पना बिल्कुल भी नहीं है। विज्ञान क्या है, जब आपने ऐसी चीजों को देखा जो सत्व के विपरीत थी तो कौन बढ़ेगा, असुर बढ़ेंगे, रजस तमस बढ़ेंगे। जब रजस और तमस बढ़े, आपने जो मैं कहता हूँ क्रोध किया, ईर्ष्या किया, या कोई ऐसा चलचित्र देखा जो सत्व को दबाने वाला था, तो किसको आहुति दी उसने, ये सब कुछ आहुति दे रहे हैं आप कुछ भी नहीं करते, जीवन भर केवल आहुति देते हैं। जिस चीज की आपने आहुति दी, यहाँ यज्ञ कुंड है, इसमें यदि मरीच की आहुति दी तो क्या होगा, लाल मिर्च डाल दे तो क्या होगा, प्रयोग किया हुआ है आप करके देख ले तो क्या हालत होगी, और उसमें सुगंधी पदार्थों की डालें, तो ये ही है पूरा विज्ञान, यही है। यदि आप वैसी आहुति देते हैं तो क्या होगा, रजस और तमस बढ़ेंगे। रजस तमस बढ़ते ही आसुरी शक्ति जो सुप्त रहती है, कहते हैं ना कि भाई अहिरावण जो है ना 6 महीने सोता था, तो ऐसे ही समझ लें कि जो योग दर्शन की भी भाषा है कि जो सुप्त चीजें हैं उनको आप जगा देते हैं। अब एक व्यक्ति के अनुकूल वातावरण आप पैदा कर रहे हैं, आधुनिक वैज्ञानिक भी मानते हैं कि वायरस करोड़ों साल तक जीवित रह सकता है अगर उसको अनुकूल वातावरण मिलते ही वो उभर जाता है, बर्फ में दबे रहते हैं, खूब दबे रहते हैं। तो अनुकूल वातावरण आपने दिया, क्योंकि जिसके कारण उसकी शक्ति बढ़ती वो सुसुप्ति में था, उसको आपने जगा दिया। तो जगा दिया तो काम कैसे करेगा? आज संसार में यही, अगर थोड़ा सा भी हम अपने विचारों को बदल लें, ये संसार तो स्वर्ग है, भगवान ने कोई लड़ाई झगड़े के लिए हमें नहीं भेजा हुआ है। तो समझने का फेर है कि हम चीजों को नहीं समझते, नहीं समझते तो अज्ञान है, अज्ञान तो काम क्या करेगा, असुर और राक्षस पिशाच वाला करेगा, वही हो रहा है। तो ये एक शक्ति हुई आसुरी, दूसरी शक्ति देवी, ये दोनों ही ईश्वर ने बनाए हैं, ये भी बात सत्य है। असुराश्च देवाश्च प्राजापत्या, ये प्रजापति की ही संतान है। क्यों बनाई है? क्योंकि एक ही प्रकार की शक्ति होती है तो व्यक्ति का विकास नहीं होता, ना फिर वो मोक्ष में जाने की सोचेगा। सोचेगा क्या हो? जब सारी सुख सीधा यही मिल रही है, दुख है ही नहीं, तो सोचेगा यही ठीक है, फिर मोक्ष में क्या जाना है। हाँ, और ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि इस सृष्टि का तो कोई आदि अंत है नहीं, तो संस्कार भोगने भी तो आना है। तो किंतु बुद्धिमान व्यक्ति कौन है संसार में, जो आसुरी को दबा के रखता है और देवत्व को उभारता है? वेद शास्त्र दर्शन जितने भी हमारे शास्त्र हैं, इनका एक ही प्रयोजन है कि असुरों को दबाना है और देवत्व को जगाना है, यही है इसका प्रयोजन, कि हमारा जीवन सभी प्रकार से सुख शांत हो, वो इसका प्रयोजन है। तो बिल्कुल बात है, असुरों को तो बिना लड़ाई के कैसे दबाएंगे? आप असुर दबे रहें, ये उपाय करो, आपका आहार शुद्ध हो, आपका व्यवहार शुद्ध हो, आपका विचार शुद्ध हो, तो असुर जगेंगे नहीं। मरे हुए से कोई युद्ध थोड़ा ही करता है। अब जो सैनिक मर गया है उससे आप युद्ध करेंगे?
बाहर भी जो असुर है इस प्रकार से,
वो तो अगर सभी लोगों में परिवर्तन हो जाए तो बाहर भी असुर नहीं बचेंगे। अब जो बाहर के जो असुर हैं उनको तो पहले बाद में देखना, पहले अंदर वालों को, जहाँ हमारा क्षेत्र है समस्या वही है, जिसमें हम कार्य कर सकते हैं उसको न करके दूसरे के क्षेत्र में कार्य करते हैं, वही समस्या। तो बाहर वाले हावी हो रहे तो उनके लिए वेद में उपाय भी बताए हुए हैं।
तो लड़ाई तो हो ही रही ना,
कौन सी अब आप ये देखो, वो तो चलो छोड़ दो कि वो आप पाकिस्तान पे जाते होंगे सीधा या दूसरे लोगों पे जा रहे होंगे, है ना मिले। हाँ, अब आप ये देखो, यहाँ जो संस्था में हम रहते हैं, जहाँ आसपास के वातावरण में रहते हैं, ये सब लोग हमारे भाई, कोई विरोधी भी नहीं है, कोई विधर्मी भी नहीं है, फिर हम उनके साथ क्यों ठीक नहीं रह सकते? वहाँ भी तो समस्याएं हैं। मैं तो अभी तो उसकी बात चल रही है, बाकी शत्रु अगर हमले की तैयारी कर रहा है नहीं मानने वाला, तो वेद में ये भी आ जाएगी शत्रु के आक्रमण से पहले आक्रमण करे, ताकि युद्ध उसकी भूमि पे हो। हम इतने आपको कमजोर नहीं बना रहे हैं, हम तो आपको जीवन जीने का विज्ञान बता रहे हैं कि आपस में आप संगठित रहें। बाकी अगर कोई शत्रु बलवान है तो वेद कहता है उत्तिष्ठता सन्नद्धम उदारा केतु विषय सर्पा इतरा जना रक्षांसी अनुधावतर, कि शत्रु के आक्रमण से पहले झंडे उठाओ और हम कर वहीं जाकर आक्रमण करो। अगर दुष्ट है, वेद धर्म का विरोधी है, गौ हत्यारा है, सारा है, तो वेद की आज्ञा है, किंतु ये आज्ञा आपस में कर लेते हैं, वहां भारी समस्या है। वेद की आज्ञा तो उनके लिए है, अपने भाइयों के लिए थोड़ी है, और वो भी वैसे हमारे ही भाई हैं, उनको समझाना चाहिए पहले, नहीं समझते फिर उसके बाद की बात, तो उसकी बात कह रहा हूं। तो आपस में मित्र से चक्षुषा सर्वाणी भूतानि समीक्षे, और शत्रु आ जाए तो उसके भी उपाय, पर आपस में तो शत्रुता ना करें ना, भारी समस्या वहां हो रही। तो ये बात होगी, तो ये बात सुस्पष्ट हुई किसी को कि दो शक्तियां हैं देवी और आसुरी। अब इन दो शक्तियों में ये निरुक्त कैसे आसुरी शक्ति को दबा सकता है, और देवता का ज्ञान होना जरूरी है। देवता का ज्ञान नहीं होता तो असुर का तो ज्ञान, क्योंकि दो शक्तियां हैं, कौन कौन सी, रजस और तमस, वो फिर अपना ज्ञान करा ही देते हैं लगभग 24 घंटे में, 2-4 बार तो सबके मन में वो करा ही देते हैं कि हम उपस्थित हैं, करा देते हैं ना आचार्य जी, करा देते हैं कि हम उपस्थित हैं, किसी से ईर्ष्या हो गया, किसी से द्वेष हो गया, देवता भले ही ना कराएं पर ये जरूर करा देते हैं कि हम मरे नहीं, सक्रिय हैं। तो जो देवता है इसका ज्ञान यदि आपने कर लिया, ज्ञान का अर्थ क्या है, देवता का स्वरूप, वो देवता हमारे मन में भी है, वो देवता हमारे शरीर में, यथा पिंडे, ये बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान है शास्त्रों का, जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में। सूर्य आपको लगता है आपके शरीर में, चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्य अजायत, ये जो काला काला रेटिना दिखता है ये सूर्य का प्रतिनिधि है, मतलब सूर्य का सूक्ष्म अंश यहाँ है, मन मन का संबंध चंद्रमा से है, वायु देवता का संबंध कर्ण इंद्रिय से है, अग्नि का संबंध वाक से है। ये मैं कभी चलाएंगे, ये भी कभी बोर्ड पे लिख के कि सारे देवता शरीर में कहाँ रहते हैं, उसके बाद उस बाद ही ध्यान प्रारंभ होगा, क्योंकि धारणा कर पाएंगे आप है तत्व कहाँ रहता है तभी ध्यान होगा आगे। तो वो भी संध्या के मंत्रों में भी कभी व्याकरण पहले तो इसको कर ले लगा देंगे। जो कुछ शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। ये वाक्य लुप्त संगीता का है, वाक्य है चरक में वैसा ही है, पूरा बताया भी है। अथर्ववेद का एक मंत्र है कि देवता सारे शरीर में कैसे प्रवेश हुए, वाक्य अभी मिलता नहीं है कहाँ का, यह हम खोज नहीं पाए हैं, किंतु ये सत्य है कि ऐसा है, क्योंकि अथर्ववेद के मंत्र तो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ, वो तो है, उपनिषद में भी कुछ है और चरक में तो एक अध्याय इसके लिए है, तो हम उस पर अभी नहीं जाएंगे। तो देवता और असुर, तो देवता क्या है, देवो दानात्वा, जिसने दान दीपनात्वा, जो प्रकाशित रहते हैं और प्रकाशित करते हैं, देवो दानात्वा दीपनात्वा द्योतनात्वा, जो द्युति जो चारों तरफ अंतरिक्ष में दिखती है ना, द्युति दीप्त हुआ, तो खुद भी द्योतित है और दूसरों को भी करते हैं, दीपनाथ से वैसे वो आ गया है। और द्विस्थाने भवती दिवा, या जो दुलोक में रहते हैं, ये चार क्वालिटी जो है, चार जो है देवताओं के लिए है। और इनके स्वरूप 300 लगभग वेद मंत्रों में है। तो अब देवता के ज्ञान से व्यक्ति आध्यात्मिक कैसे होता है, अब उस पर आते हैं। असुरों को तो काफी चर्चा हुई है, वो अपना परिचय कराते भी रहते हैं, हम इस पे चलते हैं। तीन प्रकार का विज्ञान है, आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभौतिक। ब्रह्मांड तीन प्रकार से फैला हुआ है, द्युलोक में, अंतरिक्ष लोक में, पृथ्वीलोक में। हमारा शरीर भी तीन जगह प्रकार से फैला हुआ है, नाभि के नीचे का हिस्सा पृथ्वीलोक है, कर ये उदान प्राण जो यहाँ कंठ में गड्ढा सा है, यहाँ तक अंतरिक्ष लोक है और यहाँ से ऊपर द्युलोक है। तो इसमें आध्यात्मिक ज्ञान करना है, आध्यात्मिक ज्ञान करना है यानी यहाँ से लेके ऊपर वाले हिस्से को जानना है। आत्मानम अधिकृत है तो अध्यात्म, तो जब तक ऊपर के हिस्से में जो देवता रहते हैं, आपको जानना किसको है, वैशेषिक दर्शन के अनुसार अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी दिक् काल आत्मा और मन, नौ तो द्रव्य हो गए, छह पदार्थ हो गए, पांच क्रिया होगी, 24 गुण हो गए, परत अपरत हो गया, सामान्य विशेष हो गया। तो छह पदार्थों को आपको जानना है। अब इस ऊपर वाले हिस्से को जानना है आपको अध्यात्म में। तो जब तक आप इसके अंदर, जानना किसको है जो इसके अंदर रहता है, तो इसके अंदर कौन रहते हैं, देवता रहते हैं, प्राण भी एक देवता है, तो उसको कैसे जानेंगे आप। ये सूर्य को जानना है जो चक्षु के अंदर है, मन को जानना है जो चंद्रमा के अंदर है, तो उसका देवता का यदि मंत्र से जान नहीं होता, क्योंकि दर्शनों में तो ये नहीं बताया हुआ इस विषय को लेकर। तो अब मंत्र में सूर्य देवता के लगभग 1500 मंत्र हैं चारों वेदों में, मतलब 1500 प्रकार की शक्तियां आप अपने अंदर यहां जमा सकते हैं देवता के ज्ञान से। मन के यानी चंद्रमा के लगभग 500 से ज्यादा मंत्र हैं, उनका ज्ञान आप कैसे करेंगे जब मंत्र ही आप नहीं पढ़े। तो देवता का ज्ञान ही आपको आध्यात्मिक बना सकता है। अब आपको अंतरिक्ष का ज्ञान जानना है, उसका भी जानना है, अंतरिक्ष का शरीर वाले का भी जानना है। तो जो देवता यहाँ रहते हैं उनके मंत्रों को आपने नहीं जाना। अब योगश चित्त वृत्ति निरोध है, ये एक सूत्री लेते हैं तब ये घटेगा। तो चित्तस्य ये विचारा संति तेसाम निरोधनमेव खलु योग, योग चित्त वृत्ति और निरोध, चार बातें हो गई। योग की भाषा पे नहीं जाएंगे हम, केवल चित्त पे जाएंगे। अब चित्त के विचारों को निश्चयण रुधिर आवरण, उनको हटा देना, रोक देना, तो वो योग है। तो वो चित्त क्या है, बिना मंत्र पढ़े कोई भी व्यक्ति चित्त को ठीक से नहीं जान सकता, ये सत्य है, इसमें किसी की कोई निंदा नहीं है। क्यों ऐसा, क्योंकि चित्त के लगभग 50 से ज्यादा मंत्र चारों वेदों में हैं। तो ईश्वर ने बताया हुआ है कि वो चित्त क्या है, क्योंकि उसके विचारों को रोकना है आपको, तो उसको जानना पहला धर्म है। आपको पता लगे कि भाई शत्रु सेना कितनी बड़ी है, उसके पास क्या है, तभी तो आप सज्जा करेंगे, उसको रोकने का प्रयास करेंगे। आप 10 सैनिक लेके खड़े, वो 1,00,000 आ रहे हैं, कैसे रोकेंगे आप उसको। तो पहले चित्त की शक्ति को जानना जरूरी है और चित्त का स्वरूप क्या है। और परमात्मा ने कोई विषय नहीं छोड़ा जो मंत्रों ने, 20,379 मंत्र हैं, तो क्या कोई विषय बचा है? क्योंकि अरबों वर्षों तक तुम वेद ही पढ़ते रहे तो ग्रंथ ही नहीं कोई, बुद्धि कम होने से बना है। माता जी ये व्याकरण लगा देता हूँ आपको भी समझ में आ जाएगा। मन और चित्त दो शक्तियाँ शास्त्रीय और वैदिक दृष्टि में अलग अलग हैं। कभी कभी दोनों को एक रूप में कह दिया गया है, पर ये दोनों अलग हैं, क्योंकि मन के विचारों को तो नहीं रोका जा सकता, योगी भी नहीं रोक सकता, वो खाएगा बोलेगा। हाँ, चित्त में जहाँ 90% शक्ति है उसको रोका जा सकता, क्योंकि जन्म जन्मांतर के संस्कार चित्त में ही स्थिर रहते हैं। मतलब आप ऐसे समझे कि कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क है ना, वो चित्त है, और जिससे सॉफ्टवेयरों से काम कर रहे हैं ये मन है। तो चित्त क्या है? चित्त ही संजाने, ये व्याकरण के बिना चीजें मतलब खुलती नहीं है। तो सम्यक्तया यत्र जानम संस्कार रूपेण स्थितम तच्चित्तम, तो जहाँ संस्कार के रूप में जान जन जन्मांतरों का स्थिर है वो चित्त है। ऐसे समझे कि चित्त नदी का तो अंदर का हिस्सा, तो जो वृत्तियां चल रही हैं वो चित्त में चल रही हैं, और ऊपर पानी जो तीव्र गति से दौड़ रहा है वो मन है। बस इसको ऐसे, हाँ, क्योंकि उपनिषद में भी चित्त को और मन को अलग माना है, वेद में भी दोनों के मंत्र अलग हैं, और अपने आर्यवेदाचार्य महर्षि चरक ने भी दोनों को अलग अलग माना है। क्योंकि यदि हम मन पे काम करेंगे तो कभी विचारों को नहीं रोक पाएंगे। जहाँ विचार हैं, वासनाएं जहाँ जमा है, वहाँ काम करेंगे, उसका नाम चित्त है। इसलिए योग दर्शन में मन नहीं बोला, चित्त बोला है। तो उसके माता जी बहुत मंत्र हैं इन चीज़ों के, और मंत्रों में पूरा खोला हुआ है कि ये क्या है, कैसे करता है, कहाँ रहता है। तो बिना इसके इसको भी नहीं रोका जा सकता। फिर समाधि में क्या करेंगे? वितर्क, विचार, आनंद, अस्मितानुगत रूपा, जो चार प्रकार की समाधि है, ये भी द्रव्य है भाई। परमाणु से लेकर परमेश्वर पर्यंत महर्षि ने कहा है कि ये विद्या है, तो ये भी तो एक देवता है सारे। अग्नि भी एक देवता है, जल भी एक देवता है, वायु भी एक देवता है। तो इसका स्वरूप बिना मंत्रों के कैसे जानोगे? 2200 के आसपास मंत्र अग्नि देवता के हैं। तो बिना इसके, इसलिए हम महान थे वेदों के कारण, कभी बनेंगे तो वेदों से बनेंगे। जब से हमने वेद छोड़े हैं तब से हमारा बुद्धि का स्तर, हमारे विचारने का स्तर, व्यवहार का स्तर, अब ये छोटे मोटे लड़ाई झगड़े, ये क्रोध ईर्ष्या द्वेष, बहुत नीचे स्तर का कार्य है। शास्त्र तो इनसे बहुत पार ले जाता है। तो ये सारी बातें मैंने आपके सामने कुछ रखी। अब आधी दैविक ज्ञान, आधी दैविक ज्ञान नाम है, आध्यात्मिक की चर्चा हो गई। आधी दैविक ये आचार्य जी ऊपर से, यहाँ से लेके ऊपर के हिस्से में इसका संबंध है, मतलब केंद्र इनके वहां है, बाकी घूमते हैं नहीं घूमते इसको कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसा नहीं है। किंतु केंद्र जो है, ये कंठ से लेके ऊपर के जितनी दिव्य शक्तियां हैं वो ऊपर के हिस्से में केंद्र है इनके। जैसे स्विच दबाते हैं ना, कहीं भी चीजें चलती हैं, पर स्विच तो वहां पे है, तो केंद्र इसके वहीं है सबके। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया, जब भी दिमाग में थोड़ी सी चोट लगी तो सब कुछ निष्क्रिय हो जाता है, व्यक्ति बेहोशी में चला जाता है, तो तब भी लगता है कि वहीं कुछ गड़बड़ हुई है। ऊपर के वहीं होना चाहिए, क्योंकि द्युलोक की बात है ना, सब द्युलोक से संबंध है देवताओं का। हृत का अर्थ ये हृदय जो डॉक्टर निकाल लेते हैं, मेरी दृष्टि में तो ये नहीं होना चाहिए। आत्मा तो भले होता हो, किंतु बात मन की और उसकी चल रही है, जो दिमाग में जो सूचनाएं है ना, दिमाग में सूचना है, मन का जहाँ संबंध है, बुद्धि का जहाँ संबंध है वहाँ होना चाहिए। आत्मा तो क्योंकि उसकी शक्तियों से काम होता है। वैसे तो अब इसके लिए अलग से समझ चाहिए कि पहले दो परमाणु थे, फिर क्या बना, ये हमारा शरीर ही क्या है, उसके लिए फिर कभी देखेंगे। दो परमाणु मिले, फिर कोशिकाएं बनी, ये सेल बने, ये हुआ वो, आधुनिक और प्राचीन से दोनों से, तो वो भी लगता है कि ऊपर के हिस्से में सारा काम है। आज भी देखते हैं किसी को थोड़ी चोट लगी, स्मृति शक्ति चली जाती है, तो चोट तो यहाँ लगी, अगर यहाँ का संबंध है तो कैसे गई?
काम करने के साथ में
वही है ना, तो केंद्र यही है, क्योंकि केंद्र में हानि होने से समस्या होती है, नहीं तो प्राण तो नीचे तो चल रहा है, हृदय में तो सारा चल रहा है। तो लगता भी वही है, क्योंकि द्युलोक से संबंध है इन सारे देवताओं का, और द्युलोक क्योंकि यहीं से ऊपर माना है। तो आधी दैविक विज्ञान, अभी तो आध्यात्मिक पे थोड़ी चर्चा है, आधी दैविक विज्ञान वो हम करेंगे मंत्रों में तीन तीन प्रकार का जैसे यथासंभव होगा। आधी दैविक विज्ञान क्या है? सूर्य का भौतिक स्वरूप, सूर्य में क्या हो रहा है, ये कैसे बना, इसका हम कैसे ऊर्जा में विनियोग कर सकते हैं, जो आजकल वैज्ञानिक कर रहे हैं, तो इसको आधी दैविक विज्ञान कहते हैं वेद की भाषा में। आध्यात्मिक हुआ आदि। जल है, जल 101 प्रकार का है, यानी 101 प्रकार के गुण जल में है, ये तो दो चार ही जान पाए आजकल के ये मिनरल है ये है, तो उसको लेके जो लाभ उठाना है समाज और राष्ट्र के लिए वो है आधिदैविक विज्ञान। आधि भौतिक, आधि भौतिक ये है कि जो पृथ्वी पे घटनाएं एक प्रकार से हो रही हैं, या जैसे जो अग्नि के अंदर जो गुण है वही गुण किसी विद्वान के आचार्य के सेनापति के अंदर है, तो उसको लेके जो व्याख्या की जाती है वो आधि भौतिक व्याख्या। आधि दैविक व्याख्या वैज्ञानिक लोग उल्टा अर्थ करते हैं, आधि भौतिक व्याख्या वो है जो इव अर्थ में होती है, अग्नि इव, कि जैसे ये अग्नि है वैसे ही ये काम करता है, पुरोहित है, ऋत्विक है, इतने काम करता है, ऐसे ये विद्वान आचार्य सेनापति करता है, तो वैसा उसमें घटा लिया जाता है। पे तीन प्रकार के अर्थ हर मंत्र के नहीं होते, बहुत मंत्रों के होते हैं। तो इसमें देवता क्या करेगा, इस पंक्ति को आप लिख लीजिए, अर्थम वाचः पुष्प फलमाह, अर्थम वाचः पुष्प फलम आह, हा याज्ञ देवते पुष्प फले, याज्ञ दैवते पुष्प फले, देवता अध्यात्मे वा, ये समझ लीजिए कि वेद के विज्ञान को समझने का तीनों प्रकार के सूत्र है। अध्यात्मे वा इकट्ठे लिखना, समास हुआ हुआ है, देवता अध्यात्मे वा, द्विवचन है दोनों। अब इसकी व्याख्या कर लेते हैं, लिख लिया होगा सभी ने, अर्थम वाच है पुष्पलमा, अर्थम वाच है वेद वाणी का जो अर्थ है उसको, वाच है अर्थम, इसका अन्वय होगा वाच है अर्थम पुष्प फलमा, वेद ये वेद वाणी का जो अर्थ है, अर्थात अग्नि मीड़े पुरोहितम, इस मंत्र का जो अग्नि का स्वरूप है, पुरोहित कैसे है, ऋत्विक कैसे है, होता कैसे, रत्नों को प्राप्त कराने वाली कैसे है, इस अर्थ को पुष्प और फल कहते हैं। और फल मतलब वेद मंत्रों का जो अर्थ है उसने जान लिया जिसने, तो उसको पुष्प भी मिल गया और फल भी मिल गया, यानी पौधा लगाया था, किस लिए लगाता है व्यक्ति पौधा, पुष्प भी मिल जाए और फल भी मिल जाए, तो उसको दोनों की प्राप्ति हो गई है। ये सामान्य अर्थ हुआ, विशेष आगे बता रहे हैं, याज्ञ दैवते अर्थ, या इसको ऐसे मानो यज्ञ का जो जान है, यज्ञ का जो जान है उससे क्या होता है देवता का जान, यज्ञ का जान तो क्या हुआ पुष्प हुआ, वेद मंत्रों में जो यज्ञ का जान हुआ, क्योंकि यज्ञ के हजारों मंत्र वेद में यज्ञ से संबंधित, तो वो तो क्या है याज्ञ नाम है, यज्ञ से संबंधित जो जान है वो याज्ञ हो गया, वो क्या है पुष्प है, पेड़ लगाया तो पुष्प मिला, उसके बाद पुष्प के बाद क्या आता है फल आता है, और देवता का जान क्या हुआ फल हुआ, मतलब यज्ञ से भी आपको क्या करना है देवता का जान करना है। मंत्र आपने पढ़ा, अर्थ को जाना, अर्थ से आपने यज्ञ के स्वरूप को जाना, तो यज्ञ का स्वरूप क्या है पुष्प है, और उस यज्ञ के जान से जो आपको फल की प्राप्ति होगी वो हो गया देवता का जान, तो देवता का जान क्या हो गया फल हो गया, मतलब मंत्र पढ़ने से आपको क्या मिलेगा देवता का जान होगा, और वो देवता मैंने बता दिए कहाँ कहाँ रहते हैं। और आगे चलते हैं, देवता आध्यात्मेवा, अथवा क्या होगा मंत्र पढ़ने से, देवता तो पुष्प होगा, जब आपने मंत्र पढ़ा तो क्या मिला आपको पुष्प मिला, और उस पुष्प का फल क्या होगा अध्यात्म, तो अध्यात्म का ज्ञान उसका फल होगा, तो ये है सारा कुछ इस पे टिका हुआ है। अगर देव तक आपको ने जान कर लिया तो आपको हर प्रकार के पुष्प और फलों की पुष्पल तो लिखा हुआ है, बाकी सभी चीजों की प्राप्ति होगी। आध्यात्मिक व्यक्ति भी वही हो सकता है जो ठीक से देवता का ज्ञान करता हो। क्यों? क्योंकि जहां भी वो ध्यान करेगा, धारणा करेगा, समाधि में जानेगा, वो सारे देवता हैं। तो देवता अध्यात्म, और देवता का ज्ञान पुष्प है और अध्यात्म उसका फल है। तो ये सामान्य रूप से, बाकी ये मंत्र में ये बात आई है, वो मंत्र जब आएगा और विशेष व्याख्या करेंगे। अब हम आगे चलते हैं पाठ के लिए। तो ये देवता अध्यात्म आप सभी याद कर लें और इसको घटा के भी देखें। अब जैसे आपको पता लगा कि मन का चंद्रमा से संबंध है, तो जब आप ध्यान करें तो चंद्रमा से उसका संबंध जोड़ें। तो अब हमारे चार प्रकार के पदों पे चर्चा हो चुकी थी। उनका दो का पता लग गया था, बाकी तो दूसरे पाद में इसी में आ जाएंगे, उपसर्ग इसमें आ जाएंगे और दूसरे पाद में निपात आ जाएंगे। तो यहाँ तक तो किसी को कोई समस्या नहीं, अभी तो पाठ धीरे ही चल रहा है, पाठ की तो गति तो बढ़ेगी, नहीं तो ऐसे तो डेढ़ साल में पाठ नहीं होगा। तो शुरू में क्योंकि भूमिका अच्छी बन जाए तो चीज़ें समझ में आ जाती हैं, तो रोज़ तैयारी करें। अब आगे चल रहा है कि शब्द जो है, जो मैंने बोला आप बोल रहे हैं, ये नित्य है या अनित्य है। दो पक्ष हैं कि शब्द मैंने बोला और वाणी से प्रकट हुआ और जाके नष्ट हो गया। दूसरा वैयाकरणों का, नैरुक्तों का जो मत है, ये मत जो है न्यायिकों का है। शब्द जो है घटवत जो है वो अनित्य है, किंतु वैयाकरण और जो नैरुक्ता और मीमांसक भी एक प्रकार से है जी। वैयाकरण माता जी जो व्याकरण जिसने पढ़ी है कोई बात नहीं माता जी, संस्कार रहेंगे तो आप अग्नि जलम में जरूर पढ़ेंगे आपके। अच्छा जिसने व्याकरण शास्त्र को पढ़ा है वो वैयाकरण होगा, जिसने मीमांसा शास्त्र को पढ़ा है वो मीमांसक होगा। ये उपाधियां हैं। हाँ तो वैयाकरण मतलब ये सारे वैयाकरण इन्होंने व्याकरण पढ़ा। हाँ तो उनके मत में शब्द जो है नित्य है। आप सभी ने पढ़ाया महावाश्य, कौन बताएंगे क्या कहा है पतंजलि ने शुरू से? हाँ नित्य शब्द नित्येषु च शब्देषु किं भवति। हाँ बोलो। अभी अभी तो पढ़ाता, इतनी जल्दी भूलेंगे तो कैसे काम चलेगा। क्या हाँ नित्य शब्द तद यथा न कश्चित कुंभकारम कुलम गत्वा कुरुकम कुरु घटम नहीं नहीं तद यथा कुंभकारम कुलम गत्वा कुरु कुंभम कार्यम अनेन करिष्यामि। माता जी कोई किसी के घर पे गया कुम्हार के, बोला भाई घड़ा बनाओ मैं इससे कार्य करूंगा, ऐसे कोई जो व्याकरण जानता है उसके घर पे जाके नहीं कहता कि शब्द बनाओ मैं इसको बोलूंगा। तानी उन्हीं उन्हीं शब्दों को लेके शब्द का प्रयोग करते हैं, इससे जाना जाता है कि शब्द नित्य हैं, घड़े के समान नहीं है। एक बात। दूसरी बात, अगर शब्द अनित्य है तो कितने दोष आएंगे, क्योंकि वो शब्द को ही अनित्य नहीं मानते, वर्ण को भी फिर अनित्य मानते हैं। क्योंकि अब जैसे बोला मैंने रामचंद्र, तो जब रा था तब अ नहीं था, जब अ था तो च नहीं था, च था तो अ नहीं था, तो वो तो फिर रामचंद्र उस व्यक्ति को जान कैसे हो गया, क्योंकि वो तो वर्ण तो नष्ट होते रहे। हाँ तो ये दो पक्ष यहाँ चलेंगे, थोड़ा सा ही है, ज़्यादा बड़ी इस पर चर्चा नहीं है। इंद्रिय नित्यम वचनम ओदुम्बरायण, उदुम्बरस्य युवापत्यम ओदुम्बरायण। उदुम्बर नाम का एक आचार्य था, उसका जो जवान पुत्र था उसका नाम ओदुम्ब्रायण है, उसने कहा कि इंद्रिय एव नित्यम, इंद्रिय नित्यम सप्तमी तत्पुरुष है, इंद्रिय में ही शब्द नित्य है, अर्थात जब तक वो बोला तब तक है, उसके बाद में वो नष्ट हो गया। मतलब इंद्रिय टकराई, जैसे का बोला तो टकराई, जीवा टकराई दांतों से, तो उसके बाद में नष्ट हो गया, इंद्रिय तक था उसके बाद में शब्द नष्ट हो गया, मतलब शब्द अनित्य है, टकराने तक तो था वो, उसके बाद समाप्त हो गया, ऐसा ओदुम्ब्रायण का मत है। अब इस मत का खंडन कर रहे हैं। यदि आप ऐसा मानोगे तो क्या होगा, यास्क जी इसका समाधान कर रहे हैं। अयुगपत उत्पन्ना नाम व शब्दा नाम इतरेतर उपदेश। अयुगपत उत्पन्ना नाम, जो एक साल युगपत उत्पन्ना, युगपत उत्पन्ना तेसाम युगपत उत्पन्ना नाम, न युगपत उत्पन्ना, अयुगपत उत्पन्ना, अयुगपत उत्पन्ना नाम, जो एक साथ उत्पन्न नहीं हुए हैं, वह शब्दा नाम इतरेतर उपदेश है, एक दूसरे के प्रति उपदेश नहीं होगा। जैसे देवदत्त ग्रामम गच्छति भो आगच्छ, जब मैंने भो बोला तब आगच्छ नहीं, जब आगच्छ था तब भो नहीं है, तो व्यक्ति का व्यवहार ही नहीं चलेगा। अगर आप ऐसा मानेंगे शब्द नष्ट हो गया, नष्ट हो गया तो उसको ध्यान ही नहीं रहेगा मेरे को किसने क्या कहा था, क्योंकि वो तो शब्द उस तक नष्ट ही हो गया, तो ऐसा होता नहीं है लोक में, इसलिए आपकी बात ठीक नहीं है। व्यक्ति तक सूचना पहुंच रही है, इसका मतलब उसके पास में समुदाय पहुंच रहा है, न कि वर्ण नष्ट होकर पहुंच रहा है, नहीं तो सुना कैसे। अब मैं बोलूं गौतम, जब गय बोला था तब ओ नहीं था, फिर त नहीं था, तो इनको पता कैसे हुआ कि अब मैं इनको बोलूं गय ओ त, थोड़ी थोड़ी देर में बोलूं नष्ट करके, तो ये समझेंगे नहीं क्या होगा। अब मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, तीन दिन से, दो दिन पहले बोला, आज भी, तो आपको समझ में आ रहा है, अगर ये शब्द नष्ट हो गए तो याद कैसे रहा, तो ये भी बात ठीक नहीं है।
ऐसा भी तो होता है, तो वर्तमान में जो बोला गया वो एक बार कह दिया शब्द, तो वहाँ फिर बोलने के पश्चात
में उसकी सत्ता
तो प्रतीत हो गई, लेकिन वहाँ
बार-बार आवाज नहीं आ रही, जैसे पहाड़ पे तो ये आवाज देते हैं, इसमें कोई निषेध नहीं कर रहा, अभी तो हम इनकी सुन ले कि कहना क्या चाह रहे हैं। हाँ, ये कहना चाह रहे हैं, और ये यास्क ऋषि थे, इसका मतलब परंपरा से ओदुम्ब्रायण ऐसा मानता था, तभी तो इस उनका खंडन करेंगे, नहीं खंडन क्यों करेंगे। इसका मतलब जो बात हम अभी समझ रहे हैं तो हमसे पहले तो इन्होंने समझी होगी, अगर वो समझे होते तो यहाँ खंडन नहीं करते। इसका मतलब ऐसा नहीं है जैसा आप कह रहे हैं, ये उसको ऐसे ही मानते थे कि शब्द अनित्य हो गया, और वैसे ऐसे मानते होंगे तो उसका उनका भी व्यवहार नहीं चलता होगा, इसका मतलब वो नहीं मानते थे, ये भी बात माननी पड़ेगी, पर अभी तो इनकी पंक्ति लगानी है। इतरस्य इतरम प्रति, इतर शब्द था, जैसे राम चंद्र गच्छति कुछ भी कह लो, रा, तो एक दूसरे से जो संबंध था, उपदेश मतलब उच्चारण, उपदेशम नाम है तो उच्चारण वर्तते, तो एक दूसरे के प्रति जो संबंध था, उच्चारण जिस हेतु से किया गया, तो संबंध ही नहीं घटेगा, क्योंकि वो पहले वाला शब्द तो अभी है ही नहीं,
आख्यात का नाम के
साथ, हाँ किसी का कोई संबंध है ही नहीं। और एक बात और दोष आएगी कि शास्त्र में जो संबंध बताए हुए वो भी नष्ट हो जाएंगे, शास्त्र कृतो योगश्च, शास्त्र ने यह कृता संबंध तदपि नश्यति, वो भी नहीं जड़ेगा। तो वाणी तो नित्य है, वाचा विरूप नित्य है, ये मंत्र है ऋग्वेद का, क्योंकि वेद वाणी तो नित्य है, अगर वहां भी मंत्र बोले और नष्ट हो गए तो फिर वेदवाणी कहाँ। तो शास्त्र से जो संबंध बताए हैं कि मनुष्य को क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे जीना है, क्योंकि जब तक एक शब्द पढ़ेंगे दूसरा नष्ट हो जाएगा, तो संबंध कैसे जुड़ेगा शास्त्र का, वो भी नहीं जुड़ सकता, तो ये भी दोष आएगा, तो इसलिए आपकी बात ठीक नहीं है। दूसरा, शास्त्र में क्या योग किया, धातु का प्रत्यय के साथ में संबंध है, तो जब धातु है तब प्रत्यय नहीं है, जब प्रत्यय है तब, वो कहते हैं ना, जब चने हैं तब दांत नहीं, और जब दांत हैं जब चने, तो दोनों ही बेकार हैं, तो यहाँ वो भी नहीं जुड़ेगा। फिर उपसर्ग से, धातु से पहले उपसर्ग को रखना चाहिए, इस धातु से ये प्रत्यय हुआ है, ये स्वर लगता है, क्योंकि वो है ही नहीं उस काल में, तो ये सारे दोष उपस्थित हो जाएंगे। शास्त्र का, वेद का भी संबंध हो गया, और जो ऋषियों ने संबंध बनाए वो भी होगा, व्याकरण शास्त्र में जो संबंध बनाए सारे संबंध यहाँ, क्योंकि व्याकरण भी एक शास्त्र है, वो नहीं जुड़ेगा। व्याप्तिमत्ता तो शब्द से, और शब्द व्यापक है, शब्द व्यापक है इसलिए ये नित्य है, क्योंकि जो चीजें व्यापक हैं वो नित्य होती है, ऐसे वैसे घटेगा नहीं। कोई न्याय दर्शन के पंचवयव लगाने लगे ये भी ऐसा नहीं है, खासकर चंद्रगुप्त जी ने इसलिए कहा कि जो चीज व्यापक है वो नित्य है, पर ऐसा नहीं है कहो कि अब अभी आत्मा नित्य है और वो व्यापक नित्य है, पंचवयव वाली चर्चा नहीं चल रही है। तो व्याप्तिमत्वात्तु शब्द, शब्द व्यापक है, व्यापक कैसे है ये जो जिन्होंने महाभाष्य पढ़ाया अभी अभी उनको पता है, बताइए कैसे है शब्द व्यापक कैसे है, महाभाष्य में खूब बताया था। हाँ, शब्द सर्वत्र कैसे फैले हुए हैं, आकाश सर्वत्र है, जब आकाश सर्वत्र है तो आकाश का गुण क्या है, आकाश गुण है शब्द, तो गुण कहाँ रहता है, गुणी में रहता है, द्रव्य में रहता है, तो इसका मतलब सीधी बात है। तो शब्द व्यापक है क्योंकि ये आकाश का गुण है, आकाश सब जगह है तो इसलिए सब जगह है, और जो चीज सब जगह होती है वो अनित्य। और दूसरी बात, इसी शब्द को मैं यहां से बोल रहा हूं, इन्हीं शब्दों को कोई बैठा अमेरिका में बोल सकता है, तो ये भी जाना जाता है कि यही शब्द सब जगह फैले हुए हैं, एक साथ में बोल सकते हैं, ये नहीं कि भाई यहाँ से वहाँ चले गए हूँ, बिल्कुल अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस कर ले उनसे सीधा वही बोले मैं भी बोलूँ, तो ये भी एक बात है। दूसरा एक बात, ये बात पूरी होगी, तीन चार हेतु देके, अब एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि भाई शब्द बनाए ही क्यों, अब ऐसे कर दें ये एक इशारा बना ले, ऐसे कर दें जाने का बना ले, ऐसा कर दें खाने का बना ले, ऐसा कर दें व्यायाम दौड़ने का बना ले, अब जैसे घंटी बजाने की जरूरत नहीं, फिर सुबह ऐसे कर दें तो दौड़ने का समय हो गया, ऐसे कोई ऐसे कर जाके ये ठीक कह रहे हैं, जाके जगा देंगे, नहीं दरवाजे पे खड़खड़ कर देंगे जाके, तो घंटी तो घंटी भी तो संकेत ही है, नहीं ये ऐसा कह रहे हैं नहीं ऐसा कह रहे हैं, ये भूमिका है, इन्होंने नहीं दी पर ये भूमिका है। तो क्या करें, क्या इशारों से काम नहीं चल सकता, कितना बड़ा लाभ होगा, इतने बड़े शास्त्रों को पढ़ने की भी जरूरत नहीं, इशारों से ही काम चल रहा था, है ना,
मौन रहेगा हमेशा,
और मौन रहेगा हमेशा, व्यक्ति की शक्ति वैसे बढ़ेगी, ये एक लाभ और होगा। पर क्या सारे काम इशारों से हो सकते हैं, नहीं हो सकते, व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता, पशु पक्षियों की तरह ही होगा उनका। अब सुबह घंटी बजती है ना, तो कुछ जो है जो कुकुर हैं उन वो बिल्कुल जब तक घंटी बजती है तब तक उनकी अपनी कई प्रकार की आवाज़ आती है, तो मुझे लगा कि शायद उनको भी कुछ जागरण का यहाँ के संबंध है जी अच्छा वहाँ भी वहाँ का तो याद नहीं, मतलब जब ही घंटी बज जब तक घंटी बजती है कई प्रकार की आवाज़ आती है। अच्छा अच्छा, रोजड़ में तो मैं कभी ध्यान से नहीं, पर ये मेरे क्योंकि खिड़की खुली रहती है, इधर से आती है आवाज़, तो देखो वो संकेत से काम ले रहे हैं, क्योंकि घंटी जब तक नहीं बजती तब तक नहीं चिल्लाते, घंटी बजते ही उनको सूचनाएं मिल रही हैं कि कुछ जगना है अभी, तो वो सूचना देते कि हम भी जग गए, तो ऐसे इशारों से काम चल सकता है। फिर भी आप शास्त्र की क्या अपेक्षा है, शब्द विज्ञान की, वो बता रहे हैं, और भाव तो ऐसा करने से समझाना पड़ेगा ये भी शब्दों से कि इसका जाना अर्थ है, इसका आना है, नहीं समझेंगे कैसे,
पहले पता लग जाएगा,
ठीक है ठीक है, इसको देखते हैं। अण्यस्त्वाच्च शब्देन संज्ञाकरणं व्यवहारतम लोके, तो ये कह रहे अण्यस्त्वाच्च शब्देन संज्ञाकरणं व्यवहारार्थम लोके, लोक में अगर आपको संक्षेप में अपने कार्यों को चलाना है, अपनी उन्नति करनी है, तो बिना शब्दों के नहीं, इशारों से तो उन्नति नहीं हो सकती। अब मिसाइल इशारों से नहीं बन सकती, यान इशारों से नहीं बन सकते, हमारा जीवन नहीं चल सकता, अब उसको भूख है नहीं है चिकित्सक को बता ही नहीं सकता, इशारों से बीमार हो गया, काम नहीं चल सकता। कुछ लोग ऐसे भी हैं उनकी भाषा बनाई गई है पर उस भाषा में भी पूरा काम नहीं चल सकता, तो ये कह रहे हैं अण्यस्त्वात्, इसका निर्वचन कौन करेंगे, अण्य शब्द कैसे बना, भाई अति देशेन अतिशयन अणु अणियान, हाँ तो तेन अन्यस्तात, जो अत्यधिक सूक्ष्म रूप से जो काम करना है, मतलब कम से कम समय में, कम से कम शब्दों में, वो बिना भाषा के नहीं हो सकता, इसलिए भाषा बनाई। और बिना भाषा के कोई शास्त्र भी नहीं हो सकता, तो जीवन ठीक से नहीं चल सकता, पशुओं की तरह ही हमारा जीवन होगा। ये प्रयोग हो चुके हैं, भारतीय राजाओं ने भी किया, और अमेरिका में भी सन 1917 की संभावना बात है, को कोई एक व्यक्ति जंगल से मिला था, कभी पैदा हो गया होगा आदिवासी का, और वो जंगल में रह गया, वो माता पिता मर गए, जो भी हुआ होगा, तो उसको खोज कर ली कुछ जो जंगल में घूमने वाले थे, तो बंदरों की तरह ही आवाजें निकालता था, बंदरों की तरह ही रहता था, और पैर भी वैसे ही कूदता फांदता था पेड़ पे जैसे बंदर, क्योंकि उसने बचपन से वही क्रियाएं देखी, तो उसका बंदर की भाषा का विकास हुआ। तो इसलिए अगर आदि सृष्टि में परमात्मा वेदों का ज्ञान नहीं देता, तो हमारी भी यही स्थिति होती, ये सत्य है। क्योंकि व्यक्ति का स्वाभाविक ज्ञान जैसा पशुओं का, ऐसा हमारा भी है, विकास वाला ज्ञान पढ़ाने से ही आता है। तो इन्होंने कहा शब्देन संज्ञाकरणम, शब्द के द्वारा जो संज्ञाकरण है, संज्ञाकरणम नाम है, संक्षेपेण जायते अवबुध्यते अनिया सा संज्ञा, जिसके द्वारा संक्षेप से कोई कार्य चलता है उसका नाम संज्ञा है। तो संज्ञाकरणम है कि इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसका अर्थ ये है, इस देवता का ये विज्ञान है, ये जो संकेत किया हुआ है, ये व्यवहारार्थम लोके, ये लोक में व्यवहार के लिए, इसके बिना हमारा व्यवहार नहीं चल सकता। इसलिए पूर्व पक्षी ने जो बात कही थी कि संकेतों से काम चल जाता, ना वेद की जरूरत थी ना शास्त्रों की, उस बात को खंडित कर दिया है। और तो और छोड़ो, मनुष्यों में ही ये काम नहीं है, देवताओं में भी बिना संज्ञा के काम नहीं चलता। देवता मतलब वेद मंत्रों के अंदर जो वाक्य हैं, उनको मंत्र हैं, उनको यहाँ देवता, मंत्रों को यहाँ देवता कहा। तो तेषाम तेषाम केषाम मंत्राणाम मनुष्यवद देवता विधानम, मनुष्येषु इव देवतासु अपि अभिधानम कथनम वर्तते। अर्थात जैसा लोक में व्यवहार है शब्दों के द्वारा, ऐसा मंत्रों में भी है। जैसे इंद्र आगच्छ, हरिव आगच्छ, ये है ना, ये सोम याग में एक क्रिया होती है, उसको इंद्र देवता को बुलाने के लिए प्रयोग होता है, प्रथम आवृत्ति में आपने पढ़ा भी है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इंद्र आगच्छ आओ, देवदत्त आगच्छ तद्वते मंत्रेषु इंद्र आगच्छ, वायव आया ही दर्शत इमे सोमा अरंकृता, तो हे वायु आओ और सोम पान करके जाओ, इसका मंत्र में लगाएंगे व्याकरण। तो ऐसा तेषाम अर्थात जैसे नाम आख्यात उपसर्ग निपात है, ये भी घटेगा, तेषाम नाम आख्यात रूपी शब्दा नाम मंत्रेषु अपि एवमे वर्तते यथा लोकेषु, मनुष्यवत् तेषाम चतुष्टय शब्दानाम अथवा मंत्राणाम, मनुष्यवत् यथा मनुष्येषु व्यवहारो वर्तते तद्वदेव देवतासु अपि अभिधानम कथनम वर्तते, इंद्र आगच्छ, हरि आगच्छ, वायवायाहि, जैसे हम बुला रहे हैं ऐसा मंत्रों में भी बुलाना हुआ है। तो ये बात पूरी हुई। अभी तक हमने जो है यहाँ तीन चीज़ें देखी, एक तो शब्द जो है नित्य है, वो उदुम्बर आचार्य का जो मत था उसके पुत्र का, उसको खंडित कर दिया। दूसरी बात कही कि शब्द संकेत से काम चल सकता है, व्याकरण आदि की अपेक्षा नहीं है, उसको खंडित कर दिया। तीसरा केवल ये बात यही नहीं है, चार प्रकार के जो शब्द हैं जैसे लोक में इनका व्यवहार होता है, ऐसा मंत्रों में भी देवताओं का आपस में व्यवहार होता है, ये बात बताई। अब आगे जो बात है बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कह रहे हैं कि मंत्रों की अपेक्षा ही क्यों है, परमात्मा ने वेद का ज्ञान दिया ही क्यों, क्या बिना वेद के ज्ञान से हमारा जीवन नहीं चल सकता था। एक है कार्य कारण सिद्धांत, उसको समझे बिना ये समझना थोड़ा मुश्किल है। कार्य कारण सिद्धांत क्या है, एक तो होता है कार्य, जैसे ये लैपटॉप एक कार्य है, इसका कारण क्या है, जिसने बना है, जो इसमें जोड़ा है, वो सब इसका एक कारण हो गया। ऐसे ही ये संसार एक कार्य है, जो भी हमें पर्वत नदी तालाब दिखाई देते हैं, ये कार्य है, इसका कारण क्या है, तीन कारण होते हैं, चंद्रगुप्त जी बताएंगे, अभी दर्शन नए नए पढ़ के आए हैं। सामान्य बता दीजिए तीन
कारण, साधारण कारण और निमित्त कारण।
हाँ, एक उपादान कारण हुआ, एक साधारण कारण हुआ, एक निमित्त कारण। निमित्त कारण इस संसार का कौन है? ईश्वर इसका निमित्त कारण है, अर्थात जो इसको बनाने वाला है। उपादान कारण कौन है? जिससे ये बनता है। साधारण कारण क्या होता है? और कुम्हार का, जैसे घड़े पे घटा ले तो कुम्हार का चक्र दंड आदि जो है वो साधारण में भी आएंगे। मिट्टी क्या हो गई? घड़े पे घटा लेते हैं, उपादान कारण होगी। साधारण कारण क्या हो गया? चक्र और दंड हो गया। और निमित्त कारण क्या होगा? कुम्हार हो गया। और वैसे पर इसमें जो है संसार का निमित्त कारण ईश्वर हुआ, अर्थात ईश्वर ने किसी निमित्त से इसको बनाया। इसको व्याख्या में बता रहे हैं, वैसे ऐसा नहीं है कि निमित्त कारण तो वो है, पर निमित्त शब्द को हम यहाँ घटा रहे हैं। वो निमित्त कारण तो कारण है ही। तो अब उसने इस संसार को बनाया तो किस प्रयोजन से बनाया? प्रयोजन में घटेगा, किस प्रयोजन से बनाया? जो आठ चीजें हमने बताई थी, भोग अपवर्ग अर्थंग योग में बताया हुआ। तो वो जो प्रयोजन है, ये जो तीन कारणों में जो चीजें घटेंगी, तो परमात्मा ने जब इसको बनाया तो जब ये बना तो ये कार्य हुआ, कारण वो हुआ। तो इसी प्रकार जब यहाँ कार्य कारण घटाएंगे कि उसने वेद का ज्ञान क्यों दिया? वेद का ज्ञान तो एक क्या है? वो भी तो एक कार्य है। उसका कारण क्यों कौन हुआ? ईश्वर हुआ, वैसे तो स्वाभाविक है वो भी। तो जब वो ईश्वर ने इसका ज्ञान वेद का दिया तो क्यों दिया? क्या इसकी अपेक्षा थी? क्या हमारा जीवन नहीं चल सकता था? बिल्कुल नहीं चल सकता था। क्यों नहीं चल सकता था? मैंने आपको उदाहरण दिया, अकबर के जमाने में भी शायद जब वो यहाँ राज्य था तो तब भी एक बच्चे का बीरबल ने शायद ऐसा लिखा है कि प्रयोग किया था कि उसको जंगल में छोड़ दिया था, तो जब उसको लाए तो बंदरों की भाषा बोलता था, बंदर की रहता था। तो हम ऐसे ही रहते। आज भी जाके आदिवासी इलाकों में देख लो, कोई विकास नहीं, वही सारी चीज़ें, क्योंकि बिना पढ़ाए जान नहीं आता। आज ये लैपटॉप बनाया, कुकर बनाया, उसके लिए एक पुस्तक दी जाती? नहीं दी जाती। कैसे चलानी? चलाना ही नहीं आएगा, प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ऐसे ही जब ये संसार बनाया, ये कार्य हुआ, कारण ईश्वर हो, तो एक प्रयोजन क्या था इसका? तो उस प्रयोजन को बताने के लिए वेद का ज्ञान दिया गया साथ में। तो वो वेद का ज्ञान यदि ईश्वर नहीं देता तो पुरुष की विद्या तो जो है वो अनित्य है, मतलब स्वाभाविक ज्ञान होता, पशुओं की तरह ही हम रहते, ज्यादा ज्ञान नहीं होता। वो यहां बताया जा रहा है, देखिए पाठ। पुरुष विद्या अनित्यत्वात् कर्म संपत्तिर मंत्रो वेदे। कह रहे हैं कि पुरुष की विद्या जो है वो अनित्य है। पुरुषस्य नाम है मनुष्यस्य, किसी में नित्य भी दिया होगा, दो पाठ वेद है यहाँ। अच्छा, पुरुषस्य या विद्या, पुरुष विद्या, पुरुष की जो विद्या है, विद्या नाम है विद्यते जायते अनियति विद्या, जिसके द्वारा कुछ चीजें जानी जाती हैं। और वो पुरुष की विद्या कैसी है? अनित्य है। तो उस अनित्यता के कारण से क्या है? पुरुषस्य या विद्या सा नित्या, तस्मात पुरुष विद्या अनित्यत्वात् कर्मण है संपत्ति। कर्म की जो संपत्ति है वो मंत्र में, वेद में है। मंत्रो वेदे, वैसे मंत्र उनको संपादन करने के लिए, जो पुरुष का जो प्रयोजन है उसको सिद्ध करने के लिए मंत्र, मंत्र कुत्र वर्तते? वेद, वेद में मंत्र है। अब मनुष्य का लक्ष्य क्या है? आज आप कहते हैं ना बुद्धि का खूब विकास हो गया है वैज्ञानिकों की, क्या उनको ये पता लग पाया? और वो जो ज्ञान आया वो परंपरा से प्राप्त हुआ है, ऐसे नहीं कि इन्होंने कर लिया है, परंपरा से ज्ञान आ रहा है। वहाँ अमेरिका में भी ऋषि रहे हैं, सो अब अगर आप राजसूय याग में देखें तो वहाँ से लाए गए थे। तो परंपरा से ज्ञान प्राप्त होता आ रहा है, तो वो उनको पता ही नहीं है। मनुष्य मनुष्य के साथ में कैसे जीवन जिएगा? मित्र से चक्षुषा सर्वाणी भूतानी समीक्षे, केवल आर्य संस्कृति को छोड़ के किस में है? और जो गया वहीं से गया, संसार में किसने क्या किया हुआ है? तो हमें अपने प्रयोग, हम यही पता नहीं हम दुनिया में किस लिए, भले ही दुनिया के लिए हम कितने भी साधन बना लें तो हानि तो है। आज भी पता नहीं है, इतना बुद्धि का कहते हैं विकास हो गया बिना वेद के, वो भी नहीं पता लगता। तो ये सारी बातें हैं। तो पुरुष की विद्या अनित्य है, भूल भी जाता है। अब ये संसार कैसे बना पुरुष नहीं बता सकता, क्योंकि वो था ही नहीं उस काल में, और भविष्य में जब ये नष्ट होगा तब भी नहीं होगा। तो वो किसने बताएगा? जिसने बनाया है। और उसका ज्ञान क्या है? वेद है। तो सीधी बात है, बिना वेद के चीजों को ठीक से नहीं जाना जा सकता। तो इसलिए पुरुषस्य या विद्या तस्य अनित्यत्वात् कर्मण संपत्ति संपादनाय मंत्र वेदेषु वर्तन्ते। मंत्र जो है वो वेद में है। और कुछ लोग इसका अर्थ ये भी कहते हैं कि कर्म का अर्थ यहाँ अर्थ है, अर्थ यानी प्रयोजन है। तो पुरुष की विद्या के अनित्य होने से प्रयोजन संपादनाय प्राप्तये, संपत्ति का समाप्ति भी होता है, अपने जीवन की जो मुख्य लक्ष्य है उसकी समाप्ति के लिए, प्राप्ति के लिए, सम एक ही भूय प्राप्त्यते प्राप्यते इति संपत्ति, जो एक ही भूय अच्छी प्रकार होके जो प्राप्त की जाती है वो संपत्ति है, और एक ही भूय जो प्राप्त की जाती है उसमें सभी प्रकार का विकास आता है। तो उसके लिए वेद में मंत्र हैं। अब ये मैंने उदाहरण दिए कि अगर वेद के मंत्र नहीं होते तो आप कुछ भी नहीं जान पाएंगे ठीक से। आज संसार कहाँ है? एक व्यक्ति कह रहा है कि ईश्वर का स्वरूप ऐसा है, वो अपने भाइयों को ही मार रहा है। इराक में देख लीजिए क्या हो रहा है, अनेक जगह हो रहा है, सब भारत में भी हो रहा है। तो क्या ऐसा ईश्वर का स्वरूप है? बुद्धि से ही विचार लें। तो अगर वेद का ज्ञान इन लोगों को हो जाए तो क्या ऐसा करेंगे? क्या ईश्वर का स्वरूप ठीक से ज्ञान हो जाए तो संसार में समस्याएं बचेंगी, संप्रदाय बचेंगे, जात पात बचेगी, हम कहाँ रहेंगे? स्वर्ग में ही रहेंगे। महर्षि जी कहते हैं ना यही स्वर्ग है। वैसे तो सत्य ब्राह्मण के अनुसार एक स्वर्ग और भी है जो द्युलोक के पास में है, जहाँ यजमान जाता है, जो सोमयाग आदि करता है, क्योंकि वो तो काम्य कर्म है। काम्य कर्म करेगा, इतनी बड़ी तपस्या करेगा वर्षों तक, हजार हजार साल तक के भी है, जोते थे पीढ़ी पीढ़ी खप जाती थी, और वो भी इसी पृथ्वी पे जन्म लेगा तो थोड़ा अन्याय होगा। तो कोई ऐसी पृथ्वी होगी जहाँ आयु ज्यादा हो और सुख सुविधाएं ज्यादा हो, ऐसा शतपथ ब्राह्मण का मानते हैं। शतपथ ब्राह्मण में माता जी ऐसा माना हुआ है कि भाई ये थोड़ा अन्याय होगा ना, अब इसी पृथ्वी पे वो व्यक्ति भी आए, अब इसलिए महर्षि दयानंद जी तो खैर मोक्ष में चले गए, और भी जो हमारे महापुरुष क्रांतिकारी थे दोबारा आए नहीं, इसका मतलब उनके कर्म इस पृथ्वी से अच्छे थे। इस पृथ्वी के ऊपर भी देखें, उधर कहीं चले जाएं मछली वाले इलाके में तो वहाँ क्या है, और इधर आ जाएं तो थोड़ा और शांति है, हिमालय की ओर चले जाएं तो और स्वर्ग है, और कश्मीर में यदि डल झील के ऊपर घूमे पर वहाँ भी अभी नरक किया तो और थोड़ा स्वर्ग है। तो वो तो आपकी कल्पना है। तो इसमें ऐसी कोई पृथ्वी भी होनी चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी के अंदर भी सुंदर जगह है। तो कोई आ सकता है, हो सकता है सत्य वाली पृथ्वी हो, वातावरण ऐसा ईश्वर ने बनाया, क्योंकि पृथ्वी तो करोड़ों है। हाँ, तो जो ऐसे बीच में रहने वाले जो महापुरुष है वो वहां चले जाते हुए मोक्ष, जो निष्काम कर्म करता है। क्रांतिकारियों का तो देखो ये मोक्ष तो ब्राह्मणों का ही होगा, वेद पढ़ने वालों का, वो कर्म जरूर अच्छे किए हैं, दूसरी पर चले गए होंगे। क्योंकि
मोक्ष की कामना से निष्काम कर्म करता है तो वो निष्काम कर्म
है। हाँ, वो निष्काम कर्म है,
मोक्ष की कामना
कर, क्योंकि वो स्वार्थ से नहीं कर रहा ना, उसे उसका धर्म है वेद की आज्ञा, उसने बताया ये काम करना है तो करना,
स्वार्थी हो गया ना, मोक्ष पाना तो दूसरे को ही करना।
ईश्वर की आज्ञा का पालन करना धर्म है, ईश्वर की आज्ञा है कि अंतिम लक्ष्य इस बंधनों से पार जाना है।
तो ईश्वर की आज्ञा
बिल्कुल कर रहे हैं, पर वो बुद्धि के स्तर पे भी होना चाहिए, अंदर की चीजों को भी जानना चाहिए। केवल हथियार लेके मारना अंदर का तो विकास नहीं है ना, मोक्ष का संबंध अंदर के विकास से है। वो तो एक भावना के माध्यम से तो करना चाहिए, देश की रक्षा धर्म है, किंतु जो अंदर का विकास होगा, जो चीजों को जानेंगे अग्नि से लेकर परमाणु से लेकर परमेश्वर तक, तो मोक्ष तो तब होगा। वो तो उन्होंने जाना नहीं था इसलिए मोक्ष नहीं
हुआ। तो जान भी ले, क्रांतिकारी हो जाए तो मोक्ष हो जाएगा।
वो क्रांतिकारी छोड़ ही देंगे फिर। सीधी बात है, आगे चलते हैं। तो ये बात समझ में आ गई सुस्पष्ट कि पुरुष की विद्या अनित्य है, इसलिए वेदों में भगवान ने मंत्रों का प्रतिपादन किया है। स्वाभाविक ज्ञान ही लेंगे बस, स्वाभाविक ज्ञान में भी जो दृश्य काव्य है ना उसको देके थोड़ा विकास हो जाता है ना, वही है जैसे पशुओं में है वही है। अब स्वाभाविक ज्ञान तो मनुष्य को देखो होता ही है, बच्चे को दुग्ध पान का माता थोड़ी सिखाती है, स्वाभाविक ज्ञान उसको होता है, भूख भी लगती है। हाँ, वो विकास न करने से, उसके द्वारा वो विकास नहीं कर पाएगा। उद्देश्य भोग अपरगार्थम दृश्यम जो है ना, वही इसका उद्देश्य है। तो अनित्य होने से मतलब प्रयोजन को पूरा न करने से, वो अपना प्रयोजन जिसके लिए ईश्वर ने, ईश्वर का भी ने जो प्रयोजन दिया है बनाने का, संसार बनाया, वो भी पूरा नहीं होगा, उसके जीवन का उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा। तो इसलिए ये वेद का ज्ञान दिया गया है कि वो अपने उद्देश्यों को जाने। थोड़ा पहले चले जाते हैं ना, अगर वैदिक काल में हम चले जाएं, ना मैं स्तेनो जनपदे ना मध्य उपनिषद में ही, तो अच्छे काल थे ये काल, वेद के काल थे। व्यक्ति को विवाह के लिए जबरदस्ती आचार्य कहता था, क्योंकि जिसने ये तत्वों को जान लिया तो सोचात स्वांग जुगुप्सा परय संसर्ग, फल है उसका, तो फिर उसकी विवाह की इच्छा कैसे होगी, फिर भाई संसार नष्ट ना हो जाए। तो कुछ को आचार्य प्रेरणा करता, तो ऐसी स्थिति हो गई थी, इतना अंदर का विकास हो गया था। तो ये वैदिक काल में हुआ था, और आज देख लो क्या विकास हो रहा है। तो वेद की विद्या से ही विकास हुआ है, जब भी सुख शांति आई है उसी से हुई, और भविष्य में आएगी। और वैदिक राज्य लाना है तो भाई वेद तो पढ़ना पड़ेगा। अब हम कहें कि अति शीघ्र वैदिक राष्ट्र का निर्माण करना है, तो कैसे करेंगे, बिना वेद पढ़े तो निर्माण होगा? हाँ, शब्दों का निर्माण हुआ हुआ है, नेट पे डाल दें, बोर्ड लगा दें सब जगह, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है, ऐसे तो हो सकता है। और वैसे व्यक्ति नहीं हो गए हजारों वेद को विद्वान, तो कार्य नहीं चलेगा। और ये भगवान ने आप लोगों के लिए तो दिया है, पशु पक्षी को तो भोगने के लिए दिया है। वेद की आज्ञा आपका बुद्धि का विकास नहीं। हाँ, वो अभिषेक जी ने बात भी ठीक कही, ऐसा है
ये वेद की आज्ञा, राष्ट्र ऐसा उसी राष्ट्र को आज्ञा के अनुसार बना लिया।
ये देखिए, सबसे पहला है विकास, बुद्धि का विकास, या मेधाम देवगणा पितरस्य, इसलिए हम इस मंत्र का पाठ भी करते हैं कि कभी तो भावना बनेगी। बुद्धि के विकास पे सारा आधारित है। आज के वैज्ञानिक भी कहते हैं, आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक, 5-7% हम बुद्धि का प्रयोग वो वैज्ञानिक करते हैं, फिर हम तो नहीं कहते हम कितना करते हैं, वो उनके अनुसार कह रहे हो, 97% कौन करेगा? वो बिना अज्ञान दूर हुए, सत्व की प्राप्ति के बिना ये कार्य नहीं हो सकता। सत्व भी प्राप्त हो गया, अगर ज्ञान नहीं है तो भी काम नहीं चलेगा। दोनों काम साथ में करने, बुद्धि का विकास भी करना है और सत्व को बढ़ाना है, रजस तमस को रोकना है, ये बिना ज्ञान के नहीं होता। यथा यथा ही शास्त्रम अधिगच्छति विज्ञानम चस्य रोचते, मनु जी का वचन है, जैसे जैसे व्यक्ति शास्त्र पढ़ता जाता है तो विशेष बुद्धि का विकास होने से विज्ञान में उसकी रुचि हो जाती होगी। नहीं, आप कितना भी प्रयास कर ले, आपके आयुर्वेद नहीं पढ़ेंगे तो भोजन उल्टा सीधा खा कर मोक्ष का लक्ष्य तो छोड़ो, दिवंगत जल्दी हो जाएंगे।
नहीं, अगले व्यक्ति ने पढ़ रखा है,
किसने? सुन के आपकी बुद्धि में वो विकास नहीं हो सकता,
उसके अनुसार आचरण करके तो हो सकता है।
उसके अनुसार पूरा आचरण आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि बिना पढ़े बुद्धि का वो स्तर नहीं होगा। आपको क्या पता तमासी तमसा गूढ़म अग्रे प्रकेतम सलीलम, परमाणु से लेकर परमेश्वर तक जान रहा है। तो बिना मंत्रों के आप कितना भी सुन लो, क्रम से बुद्धि का विकास होता है। उदाहरण के लिए, आप जब गुरुकुल में आए कितने वर्ष हो गए? 10 वर्ष हो गए। ये चीजें आप सुनते रहते घर पे रह के, क्या इतना विकास कर लेते? अब आपको चीजें समझ में आ रही नहीं आ रही? आपको दुनिया को भी समझ में आ रही है, विश्व को कैसे ठीक किया जा सकता है ये भी समझ में आ रहा है, क्या लक्ष्य है ये भी समझ में आ रहा है, तो क्या ये घर पे रह के सुन सुन के हो सकता? कभी नहीं हो सकता, इसलिए गुरुकुल की परंपरा है। तो पढ़ना ही पड़ेगा। दूसरा, आपकी और हमारी बात में मतभेद आए तो फिर ऋषि हमारे प्रमाण है, ऋषियों ने कहा पढ़ना है तो पढ़ना ही, उसमें विकल्प है ही नहीं। हाँ, तो अज्ञान तो दूर करना पड़ेगा। खत्म करने के दो अर्थ हैं, आप अपना ऋषि कोटि के बन जाओ, व्यक्ति के व्यवहार विचार का प्रभाव सब पे पड़ता है। संस्कार तो कैसे है, जैसे बरसात से पहले सारा सूखा था, बरसात पड़ी सारी घास उग गई, किसी ने उगाई नहीं, स्वाभाविक उग गई। ऐसे हर व्यक्ति के अंदर, मुसलमानों के अंदर, ईसाइयों के अंदर, सबके अंदर अच्छे संस्कार भरो, ऐसा कुछ नहीं, नहीं भरे होते तो इतने लोग क्यों आते इधर? वो आप छोड़ दीजिए कि उनका विचार नहीं बदला, स्वामी दयानंद जी ने उनको उपदेश किया नहीं किया, क्या स्वामी दयानंद जी ने उनको वेद पढ़ाया था?
नहीं,
आप ये छोड़ो, साथ में रहने से भी विचार बदलते हैं, और उपदेश से और बार बार पढ़ने से भी बदलते हैं। साथ में रहने से उनके बदल जाते हैं जिनके सत्य के संस्कार ज्यादा हैं, पढ़ाने से उनके बदल जाते हैं जिनके मध्य हैं, और दंड देने से उनके बदल जाते हैं जिनके असुरों के हैं। उस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, वो योग में चले जाते हैं, हम इस पे कहा जाए पहले। तो ये बात पूरी हुई कि पुरुष की विद्या अनित्य है, वो प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर सकती, इसलिए ईश्वर ने जो है वेदों का जान दिया। कितना सन हो रहा है यहाँ पता नहीं लग रहा इसमें लैपटॉप में। अच्छा 10:45 हो गए, और चलाएं थोड़ा और चला लेते हैं। तो यहाँ तक हुआ कि पुरुष की विद्या अनित्य है, उसके कारण से मंत्रों का ज्ञान आवश्यक है। अब अगर आपने मंत्र नहीं पढ़े तो ईश्वर ने जिस उद्देश्य से आपको प्रयोजन के लिए भेजा था, करना तो पड़ेगा, इसमें कर लो अगले में कर लो। बुद्धिमान व्यक्ति अगले की प्रतीक्षा नहीं करता, क्योंकि परमात्मा भी ऋषि बनाने के लिए बैठा हुआ है। तम ऋषिम तम सुमेधान, हम तो अगले जन्म की प्रतीक्षा नहीं करते, हम तो सारे काम ऋषि भी इसी जन्म में बनेंगे, मोक्ष में भी इसी में जाएंगे, क्योंकि हम अनेक जन्मों का पुरुषार्थ इसी में कर देंगे। आठ चीजों के लिए भेजा है केवल मोक्ष के लिए, इस बात का ध्यान रखना। केवल मोक्ष के लिए नहीं, पहले कर्म से गुजरना पड़ेगा। आगे देखिए आगे क्या है, जीवन का एक सत्य आ रहा है कि अब बलदेव जी के ऊपर ही घटा लेते हैं, ये जब पैदा हुए तो ये इतने से थे, फिर ये इनकी सत्ता होगी, घर में थाली वाली बजे की कोई बच्चा पैदा हुआ, आध्यात्मिक भी चर्चा है साथ में वैज्ञानिक भी है। फिर जायते हुआ कि पैदा हो गया, पैदा होने के बाद ये मरे नहीं, तभी यहाँ बैठे हुए हैं। इसके बाद में अस्थि हुआ, इनका नामकरण हो गया, एक सत्ता होगी, जायते अस्थि विपरिणम थे, ये ऐसे नहीं रहे, इनमें विपरिवर्तन हुआ, अर्थात ये रोने लगे, दूध पीने लगे, थोड़ा चलने लगे, सांस नहीं, वो तो बाद में हुआ। तो जायते अस्थि विपरिणमते वर्धते, फिर ये बढ़े, इतने ही नहीं रहे, घुटनों में चलते थे फिर दौड़ने लगे। फिर चार अवस्थाओं से गुजरे, जायते अस्थि विपरिणमते वर्धते और अपक्षीयते। अपक्षीयते इसके बाद में, अभी वो इनका नहीं है, माताओं के ऊपर वो घट सकता है क्योंकि अभी बालक है, तो बाबा जी को ले लेते हैं। तो अब इनको बाल जो है धोले हुए, आंखें खराब हुई, पहले दौड़ते थे नहीं चल पाए, तो अब इनका ह्रास चल रहा है, दांत भी कोई खराब हो गया होगा, तो अपक्षीयते। और एक दिन देखेंगे कि विनश्यति, कि बाबा जी अब इस दुनिया में नहीं है। तो ये जीवन का सत्य है, इस सत्य को जो व्यक्ति जान लेता है वो धार्मिक बन जाता है, श्रेष्ठ काम कर सकता है। जो मानता है कि ऐसा नहीं है, वो मूर्खतापूर्वक जीवन जी के अपना भी विनाश करता है, दूसरों का भी कर सकता है। इसलिए गृहते केशे सुमृत्यु न धर्मम आचरे। तो ये छह भाव विकार हैं, क्रिया के छह विकार हैं, ये सब में घटेंगे, जो तीन चीजों को छोड़ के, ईश्वर जीव और प्रकृति। प्रकृति में वैसे थोड़े घट जाते हैं क्योंकि उसी का आगे विकास होता है, पर मूल में परिवर्तन नहीं होता।
सभी आचार्य नहीं मानते
हैं जी,
सभी आचार्य नहीं मानते,
सभी आचार्य मानते हैं। वारसायणी वृषणस्य युवापत्यम, ये उन्होंने ऐसा दर्शन पहली बार दिया होगा तो उनके नाम से चल रहा है, ये मानते हैं तभी तो इनका नाम दिया, महाभाष्य में भी दिया हुआ आचार्य। तो अब इन छह भाव विकारों को, जीवन के सत्य को थोड़ा देख लेते हैं। जितने भी प्रकृति से पदार्थ बने हैं, हम भी क्रिया तो द्रव्य के अंदर गति है, क्रिया तो द्रव्य के अंदर ही घटती है। हाँ, तो जायते मतलब उत्पन्न हुए एक पदार्थ को कहता है, खुद ही बताएंगे आगे कैसे घटेगा। अस्थि सत्ता को कहेगा, विपरिणमते उस पदार्थ में परिवर्तन को कहेगा, अपक्षीयते उसकी एक अवस्था को कहेगा वो वैसा नहीं रहा। भाव मतलब क्रिया के विकार हैं, हम द्रव्य भी है, और द्रव्य किसके कारण बना है, क्रिया के कारण बना है। बच्चा पैदा हुआ तो बिना क्रिया के वो भी पैदा नहीं हुआ, तो क्रिया के ही विकार होते हैं, द्रव्य भी क्रिया का ही विकार है। ईश्वर ने ईक्षण किया, जो वेद का मंत्र है, अन्यत्र सत्व ब्राह्मण में भी आता है, ईश्वर ने संकल्प किया, ईक्षण किया कि मैं इसको संसार को बनाना चाहता हूँ, तो बनाना चाहता हूँ, तो ईश्वर ऐसे बिना क्रिया के, मतलब जो उसने ऊर्जा वहां से आई जो भी हुआ, तो वो परमाणुओं में क्रिया प्रारंभ हुई, उस क्रिया का ही विकार द्रव्य बना, वो महतत्व जो बना। बिना क्रिया के तो कोई दुनिया में विकार हो ही नहीं सकता। अगर हमारे निरंतर शरीर में रक्त ना दौड़ रहा हो, ह्रास ना हो रहा हो, वृद्धि ना हो रही, तो बिना, जिस दिन क्रिया बंद होगी उस दिन हम ही बंद हो जाएंगे, उस दिन फिर दूसरी क्रिया चलेगी, वायु उसको सड़ाएगी, दुर्गंध फैलाएगी, कीड़े खाने आएंगे, वो वहाँ भी क्रिया के द्वारा ही नष्ट होगा। निर्माण और विनाश बिना क्रिया के और क्रिया कैसी है वो दिखाई नहीं देती। यही दुनिया का सत्य है।
जड़ पदार्थ में कैसे घटेगा?
कोई भी एक जड़ पदार्थ बनाओ,
पत्थर
ले लो, पत्थर बना, उसमें नित्य ह्रास हो रहा, उसकी ह्रास की गति कम है। जायते ईश्वर ने बनाया, उसकी सत्ता हो गई, सत्ता होगी तो पत्थर बढ़ेगा कैसे? कि जब मिट्टी उट्टी उसके नीचे आ जाएगी तो ऊंचा हो जाएगा। वैसे तो नहीं बढ़ेगा, वैसे नहीं बढ़ेगा। पर्वत भी बढ़ते हैं, पर वो ऐसे पत्थर नहीं बढ़ रहे हैं, नीचे जो लावा हुआ उसको ऊपर फेंक रहा है उस हिसाब से बढ़ते दिखते हैं। वैसे होती हैं, जैसे पर्वत भी ऐसे थोड़ी थे, बढ़ते रहे, समुद्र भी बढ़ रहा है, कम भी हो रहा है, पेड़ भी बढ़ रहे हैं, समुद्र भी बढ़ रहा है, कम भी हो रहा है। वो ग्लेशियर घुलेंगे तो समुद्र बढ़ेगा, नहीं बढ़ रहा होता तो कौन सा देश है वो? होलैंड। होलैंड के अंदर 8-10 फुट ऊंची दीवार जो है ना चारों तरफ घेर रखी समुद्र का पानी। हाँ नहीं, होलैंड में, होलैंड में वो आए थे ना अपने पास, होलैंड वाले एक व्यक्ति वहाँ मिले थे, वो बता रहे थे। और ऐसे ही बढ़ता रहा तो एक दिन जो समुद्र के किनारे, और बढ़ाया समुद्र, द्वारिका इसका प्रमाण है। द्वारिका समुद्र के अंदर, इसका मतलब समुद्र नहीं था पहले वहाँ, इसका मतलब समुद्र भी बढ़ रहा है और कहीं से सूख भी रहा, जैसे राजस्थान में यहाँ समुद्र था यहाँ का, तो सभी में ये बात घट रही है। तो अब इस पे इन्हीं की भाषा में घटा लेते हैं। तो सड़ भाव विकारा भवंती थी वार्षायणी, छह जो हैं भाव के, द्रव्य गुण क्रिया कहो या केवल क्रिया कहो, क्रिया ही मुख्य है, इसके छह भाव के क्रिया के विकार होते हैं, ऐसा वार्षायणी वृषस्य जो युवापत्यम आचार्य है उसने बताया कि छह चीजें हैं। ये जीवन का सत्य कहता हूं मैं इसको, यही है। आप 40 साल पहले हम अपने जीवन में चले जाए, हम कहीं दुनिया में थे, और दुनिया में थे, अब यहाँ बैठे हैं, 150 साल वाले कहीं और बैठेंगे। जैसे बचपन में थे वैसे चेहरे नहीं रहे, वो भी बदल गए सबके। और आगे चले तो पहली क्रिया क्या है, पहला विकार क्या है क्रिया का? जायते, व्यक्ति उत्पन्न हुआ, घर में बड़ी खुशी मनाई गई, उसके बाद में ये क्या कहता है जायते? इति पूर्व भाव से आदिम आचष्टे, पूर्व जो क्रिया का जो प्रारंभ है उसके प्रारंभ को कहता है, क्रिया का प्रारंभ को कहता है, यहाँ से इसका, आज से इसका जीवन प्रारंभ हो गया, इस बात को कहेगा। न अपराव भाव माचष्टे, इसके बाद वाला जो अस्थि है ना, अस्तित्व को नहीं कहता, अस्तित्व बाद में बनेगा, केवल ये कहेगा कि व्यक्ति पैदा हुआ, बस जायते उत्पद्यते, इतना मात्र कहा, बाद वाली क्रिया को नहीं कहा। हाँ, तब से आरंभ करेंगे, बाद में सत्ता तो बाद में स्वीकार की जाएगी, क्योंकि तुरंत होते ही मर गया तो उसकी सत्ता को कोई भी स्वीकार नहीं करता, नहीं हो सकता, क्योंकि हम गर्भ की अवस्था को नहीं जानते हैं। वैसे तो देखें तो बहुत पहले से हो जाता है सारा कुछ, ये छह चीजें वहां भी घट जाएंगी, किंतु हमें जो लेना है, जो हमें सीख सादा समझ में आता है, हमें सीधा समझ में आता है, हमें सबको अनुभव है कि भाई हम पैदा हुए, गर्भ की स्थिति का तो हमें किसी को जान है ही नहीं। तो जायते इति पूर्व भावस्य आदिम आचष्टे, पूर्व क्रिया के आदिम प्रारंभ को कहते हैं कि भाई इसका प्रारंभ इस दुनिया में हो चुका है। न अपर भावम आचष्टे, बाद वाली क्रिया से इसका कोई संबंध नहीं है, किंतु न प्रतिषेधिति, ये बाद वाली का निषेध भी नहीं करता। तो ये एक अवस्था मात्र को बता रहे हैं, न पहले को, पहले के प्रारंभ को बता रहे हैं, दूसरे को नहीं कह रहे, किंतु निषेध भी, क्योंकि सबको पता है दूसरी अवस्था तो होनी है, तो इसलिए इसका निषेध। किंतु हमें ध्यान किस बात पे रख रहा है, अब इसको प्रकृति में घटा लेते हैं। सत्व रजतम की साम्य अवस्था प्रकृति थी, तो प्रकृति से जो महतत्व बन रहा है, तो जो प्रारंभ की क्रिया है उसको कह रहे हैं, महतत्व से जो अहंकार बनेगा उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो तो बनेगा ही, पर उसके न, किंतु उसका ऐसा भी नहीं कह रहे कि इसके बाद कुछ नहीं बनेगा, न उसका निषेध है। दूसरा भाव है अस्ति इति उत्पन्नस्य सत्वस्य अवधारणम्। अस्ति जो है, अस्ति देवदत्त वर्तते, संतान है, मतलब उसका अस्तित्व स्वीकार कर लिया गया है। तो
गर्भावस्था में हम मानते हैं, अस्थि मानते हैं, तभी तो जो विकार
वो ऐसी हो जाती है। मैं कह रहा हूँ ये देखने का तरीका है, दर्शन है ये, ये ऐसी चीजें कहीं भी आए दर्शन है। दर्शन नाम है दृश्यते अनेनैति दर्शनम, देखने का तरीका। एक ऋषि ने देखा कि 16 पदार्थों से मोक्ष होगा, एक ने 6 से देखा, तो क्या मतभेद है उनमें आपस में? देखने का तरीका है ये, आपको वो तरीका उत्पन्न होने से बता रहे हैं, पूर्व में नहीं जा रहे।
ये घड़ा बनने से पहले जो जो क्रियाएं हुई वो सारी जायते में आ गई?
हाँ, सत्ता स्वीकार करने से पहले किया है। सत्ता जब तक घड़े की स्वीकार नहीं की, हाँ हाँ, वो जायते में आ जाएंगे। ठीक बात है। तीसरी क्रिया होगी अस्तित्व उत्पन्न से सत्वस्य, सत्वस्य नाम है पदार्थ को स्वीकार कर लिया, अवधारण कर लिया कि निश्चय है कि ये हमारे पास पैदा हुआ है। फिर उसके बाद में जो क्रिया होगी विपरिणमते इति अप्रच्यव्यमानस्य तत्वात् विकारम्। अप्रच्यव्यमानस्य का ध्यान से देने की, प्रच्यव्यमान नाम है हटता हुआ और न प्रच्यव्यमान नाम है जो अपने स्वरूप को न छोड़ता हुआ। बच्चे ने अपने स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं किया है, बच्चा वैसा ही है, आकृति उसकी वैसी ही है, किंतु उसमें क्या है विपरिणाम हो गया, स्वरूप में परिवर्तन नहीं हो, विपरिणाम क्या हो गया, अब वो हंसने लगा, रोने लगा। अब जैसे बच्चा यदि नहीं रोए तो उसको रुलाना पड़ता है। आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि बच्चे में जब तक प्राण नहीं आता तब तक नाभि नाल को नहीं काटना चाहिए। कुछ लोगों को पता नहीं होता, वो पहले ही नाभि नाल को काट देते तो बच्चा मर जाता है, क्योंकि तब तक वो नाभि नाल के माध्यम से माता से प्राण लेता है। रोदयति इति रुद्र, रुद्र वही प्राण, रोने से ही बच्चे में प्राण आते हैं, इसलिए बच्चे को रुलाया जाता है, ये इसका विज्ञान है। तो रोने के बाद ही काटना चाहिए। नहीं, माता से बच्चे में आते हैं प्राण,
पैदा हो जाता है बाद में रुलाते हैं।
हाँ,
तो रुलाते हैं तब आएंगे,
तब वो मुख्य प्राण जो है ना वो तब आते हैं, क्योंकि वो
तो होंगे चालू नहीं होंगे।
प्राण से कहेंगे जो शरीर को चलाने वाली ऊर्जा है, वो अभी तो माता के नाभि नाल से ले रहा था बच्चा, उसके बाद में उसको स्वतंत्र देनी है। स्वतंत्र देनी है तो कब आती है? वो तब आती है जब वो बच्चा रोता है, जब बच्चा रोता है तब आती है। रुद्र इसलिए प्राण का नाम है क्योंकि जब व्यक्ति मरता है प्राण जाते हैं तब भी रुलाता है, और जब आता है तब भी रुलाता है, इसलिए उसका नाम रुद्र है। तो ये हुआ, तो विपरिणाम थे, फिर रोने लगा, हंसने लगा, दूध पीने लगा, तो क्रिया करने लगा, ये उसका भी परिणाम हुआ। घड़े में तो विपरिणाम लंबे काल में होगा, बनने के बाद कैसे होगा? ह्रास तो जिसका निर्माण हुआ उसमें ह्रास भी प्रारंभ हो जाता है, पर वो इतना सूक्ष्म है कि हमें दिखाई नहीं देता।
विपरिणाम तो होगा कैसे?
विपरिणाम में
विपरिणाम में ये होगा कि घड़े की जो है कुछ तो कुछ उसकी आकृति में परिवर्तन आता है बनने के बाद में, पानी वानी भरेंगे तो कुछ आएगा ही। अब वो इतना सूक्ष्म है, आपके शरीर में रोज ह्रास हो रहा है, क्या आपको महसूस हो रहा है? सूक्ष्मतम है, किंतु जो पदार्थ बना है उसमें विपरिणाम जरूर है।
ह्रास तो हो रहा है लेकिन विपरिणाम तो अधिक हो रहा है ना, विपरिणाम अधिक हो रहा है,
चलो घड़े में ऐसे घटा लो कि उसमें भाई कच्चा घड़ा था वहां तक तो जायते रस्ती हो गया, और जब वो पका दिया तो उसमें भी परिणाम हो गया। अगर ऐसे नहीं मानते तो ऐसे हाँ मानते है जी, ये माता जी दूसरे महीने के तीसरे महीने के प्रारंभ में, मतलब आकृति पुरुष होगा या लड़की होगी वो वहाँ से प्रारंभ होता है, तो धीरे धीरे फिर इनका विकास होता है, लगभग छठे सातवें महीने में पूरा, मतलब रहती तो है पर ये विकास आठवें महीने में बुद्धि से सोचने लगता है, ये लिखा हुआ है निरुक्त में, इसी पाठ में आएगा। आठवें महीने में ये बुद्धि से निश्चय करने लगता है, इसलिए माता उस काल में यदि अच्छी चीज़ों को पढ़ें, अच्छा विचारें, अच्छा सोचें, तो क्योंकि वो माता नहीं सोच रही बच्चा भी साथ में सोचता है।
जी, जब प्राण आते हैं, जब उसका जो मन आ जाता है, तब मन है वो प्राण
जी, उसमें तो ये है कि माता दो हृदय होती है, उसमें दो हृदय हो जाते हैं, क्योंकि उसको कभी कुछ खाने की इच्छा होती है, कभी कुछ खाने की इच्छा होती है, तो केवल माता की नहीं होती, वो बच्चे की भी होती है। तो वो किस महीने से होती है वो तो आप लोग बताएंगे, तो वो तब से उनको मतलब समझने लगता है कुछ, किंतु निश्चय नहीं कर पाता है, निश्चय आठवें महीने से करता है। तो जब से ऐसा लगे ना खाने की चीज़ों को इच्छा हो जाती है, तब से वो हृदय से जुड़ जाती है, ऐसा कुछ उसमें है चरक संगीता में। जी
चक्र का खाने का नहीं है
जी,
जब मन त्याग शरीर में आ जाता है तो तब मैंने पूछा कि
वो तो
प्राण को खींच लेता
है। हाँ मन तो वैसे उसको अंदर रहता ही है,
जब शरीर
मन में लगता है। नहीं वैसा प्राण नहीं, अभी माता के माध्यम से उसका संपर्क होता है।
हाँ
तब उसका सीधा संपर्क जो है ना माता के माध्यम, अब तो स्वतंत्र संपर्क करेगा ना वो दुनिया से, अभी तो उसका माध्यम माता थी, हाँ नाभि से ले रहा था ना अभी तो प्राण, माता की नाभि से प्राण ले रहा था। ऊर्जा स्वतंत्र ऊर्जा अभी उसकी नहीं थी, उसकी ऊर्जा माता की ऊर्जा से जुड़ी हुई थी, अब उसको स्वतंत्र ऊर्जा चाहिए, तो वो जब वो रोता है ना तब वो उड़ जाते हैं। हाँ तब उसको स्वतंत्र ऊर्जा की प्राप्ति होती है, अगर बीच में उसके आने से पहले ही नाल काट दें रोने से तो फिर कई बार देखा गया बच्चों की मृत्यु हो जाती है। जी कुछ कह रही माता जी? हाँ चरक में भी लिखा हुआ है उसको ऐसे करे ऐसे करे ऐसे करे, यहाँ थोड़ा सा करे, कई चीज़ें हैं। हाँ तो अब ये तीन चीज़ें हो गई, घटे की बात थी तो जो चीज़ें हैं विपरिणाम तो हो रहा है, इतनी सूक्ष्म है ये तो मैं स्थूल रूप से बता रहा हूँ, किंतु घड़े वाला वैसे ही विपरिणाम हो रहा है जैसे बच्चे में, ऐसे तो नहीं घटेगा ना, क्योंकि यहाँ चेतनता है वहाँ जड़ता है, किंतु जड़ता में भी विपरिणाम है, क्योंकि जो भी प्रकृति से चीज़ें बनी हैं या हमने बनाई हैं उनमें चीज़ें घटी रही हैं। अब इसको ऐसे मान लो भाई घड़े में नहीं घट रहा तो घड़े को छोड़ दो, जहाँ घट रहा पौधे में घटा लो, मनुष्य में घटा लो,
क्रिया नहीं घटती है।
चलो सभी तो वैसे देखो वृद्धि का तो मैं ज़्यादा नहीं कहता, किंतु विपरिणाम तो सब पदार्थ में जो बने हैं ना वो हो रहा है, पर वो इतना सूक्ष्म है हमें, हमारे शरीर में रोज हो रहा है, रोज लाखों सेल मर रहे हैं पैदा हो रहे हैं, हमें पता ही नहीं लग रहा। साथ में चल रहा है विपरिणाम भी तो हो रहे हैं, आपके मन में ही सुबह से लेकर शाम तक कितना विपरिणाम होता है, होता नहीं होता, ह्रास वृद्धि नहीं होती ना, विपरिणाम होता है, तो वो हो रहा है पर दिखाई नहीं देता। और ऐसा लग रहा है कि भाई नहीं घट रहा, घटाना जरूरी थोड़ी है, शरीर में घटा लो और पौधे में घटा लो। हाँ वर्धते इति स्वांगाभ्युचयम संयोगिका नाम वार्था नाम, इसमें जो घटेगा आगे चौथा पदार्थ जो घटेगा उसमें वर्धते, अब बच्चा जो है ना इतना सा होता है शायद 3-4 किलो वजन होता हो, फिर उसमें वृद्धि होती है, पौधे में भी होती है, बच्चे को अरे पौधे में ही घटा लेते हैं और चीज़ों को छोड़ ही देते हैं। वर्धते स्वांगाभ्युचयम अपने अंगों का विकास, स्वस्य ये अंगानी संति तेसाम अभित उच्चयम वृद्धि, और संयोगी का नाम व अर्था नाम, जो संयोगिक पदार्थ है ना धन आ गया तो व्यक्ति बढ़ता है, नहीं बढ़ता, युद्ध में विजय मिल गई, कोई मेडल मिल गया, शास्त्र अभी इसके बाद भी निरुक्त के बाद भी वृद्धि हो ही जाएगी है ना, तो संयोगिक पदार्थ से भी वृद्धि होगी, बुद्धि में भी होगी और मन का विकास भी होगा, तो व्यक्ति को वृद्धि होती है। अब कोई हमें कहीं अपना आर्य व्यक्ति मिल जाए तो हमें लगता है कि कोई हमारा अपना व्यक्ति बैठा हुआ है, जैसे वहाँ एक आकाश सोनी जी हैं अपने जी न्यूज में, अभी तो IBN से उनमें आ गए हैं, तो कई मैं मिलका है उनसे, तो हमें लगता है कोई अपना भाई आर्य व्यक्ति वहाँ भी है। माता जी वो क्या है कि विदेश में भी रहे, BBC में भी रहे और विदेश में भी रहे, अमेरिका में भी रहे, पर व्यक्ति ने कभी खाने पीने का सिगरेट शराब ऐसा नहीं किया, उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि माता जी ने उनकी नानी जी ने इतना हवन कराया, तो वो बोले कि मेरे को कई बार इनकी तो ऐसी पार्टियाँ होती हैं तो मेरे को कभी अंदर गए ही नहीं, वो नाक में धुआं इतना यज्ञ का मैंने लिया हुआ है बचपन में कि अब मैं पूरा बचा हुआ इन सब कामों से, और अच्छे हैं अभी IBN 7 के दूसरे नंबर के वो बने हैं। 18 का, तो हमें लगता है कि भाई कोई हमारा व्यक्ति भी वहाँ अच्छा मतलब बैठा हुआ ऐसा व्यक्ति भी इस क्षेत्र में है तो वृद्धि होती है। संयोगिक पदार्थ है, हम उनसे संबंध है, संबंध भी किससे, आर्य समाज के धर्म के कारण, तो हमें लगता है कि कोई अपना व्यक्ति है तो इससे भी व्यक्ति की वृद्धि होती है, खुशी होती है तो वृद्धि होती है, रक्त की वृद्धि होती है खुश रहने से, दुखी रहने से रक्त भी सूखेगा दिमाग भी सूखेगा, वो आपके ऊपर है आप बढ़ाना चाहते हैं कम करना चाहते हैं। तो ये हो गया, अब आगे और देख ले, दो ही बचे हैं। वर्धते विजयेन वा वर्धते शरीरेण इति वा, विजय से प्राप्त कर ली तो भी व्यक्ति बढ़ता है, शरीर का विकास कर लिया तो भी व्यक्ति बढ़ता है। अब अगर आप अपने मन को शांत कर लेंगे तो आपने किस पे विजय की, असुरों पे और राक्षसों पे विजय की, तो आपको खुशी मिलेगी नहीं मिलेगी, तो देवता आपको विकास करेंगे अपने स्वरूप को खोलेंगे। और आगे है अपक्षीयत, ये पांचवी क्रिया है, जैसे बाबा जी की है अभी, हम लोगों की तो शायद इतनी नहीं है, आचार्य जी की भी अभी नहीं दिख रही है तो है ना तो अपक्षीयत मतलब जहां से विनाश प्रारंभ हो जाता है। अपक्षीयत इत्यनेने व्याख्यात है प्रतिलोमम, तो इसी का प्रतिलोम बोल दिया है वर्धते का, अर्थात यदि युद्ध में हार गए तो अपक्षीय हो गए, शरीर में कमजोरी होगी कोई अंग काम नहीं कर रहा है तो अपक्षीयत, तो वहां से प्रारंभ हो जाता है। ये सभी में घट रही है अभी, आप पौधों में मतलब जहां जीव है वहां मान लीजिए अभी, वैसे वहां भी हो रहा है। तो हम सबका ये जीवन का सत्य है, हाँ जी 1,96,53,115 वर्ष में कितने बार हमारे साथ ये घटना घटी है ना, अगर हमें सारी घटनाएं याद आ जाएं तो क्या होगा, ईश्वर की कितनी बड़ी कृपा है कि हमें याद नहीं आती, पता लग जाए चंद्रगुप्त जी को कि गौतम जी तो पिछले जन्म में हमारे शत्रु थे और ये याद रहे है ना, और ये पता लग जाए ऋषि थे तो आप इनके साथ कैसे व्यवहार करोगे, सीधी बात, ऋषि का सम्मान देंगे
और पता लग जाए पिछले जन्म पिता है तो फिर
बोल बन जाए और सम्मान होगा, तो क्या थे हम किसी को कुछ पता नहीं, क्योंकि
वेद पढ़ लेंगे और फिर पता चल जाए फिर अंधे से मुक्त हो जाएंगे ना, फिर तो कोई दुश्मनी नहीं
बचेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं बचेगा, राग द्वेष तो छोड़ो ये सब छोटे मोटे कामों में रुचि नहीं बचेगी, केवल ऋषित्व की और संसार का महाल कल्याण करने की रुचि बचेगी, ये सब छोटे मोटे कामों में कोई रुचि बचती नहीं,
तो पता चलना चाहिए ना कि मेरे पिछले जन्म
में, हाँ वो योग में लिखा हुआ है जा वो अप क्या है अपरिग्रह, हाँ तो जनाम कथांत संबोध है कुछ ऐसा है तो वो हो जाएगा आपका। और आगे चलिए छठी है, ये जीवन का अंतिम सत्य है, विनश्यति इति अपर भावस्य आदिमाचष्टे न पूर्व भाव आचष्टे न प्रतिषेधिति, तो विनश्यति क्या है, अपर भावस्य आदिमाचष्टे अंतिम क्रिया के प्रारंभ को कहते हैं, ये नहीं कि विनाश हो सकता है 10 साल में हो 100 साल में, अब जब संसार इस का विनाश प्रारंभ होगा ईश्वर करेगा तो 1 करोड़ और 20 लाख वर्ष से ज्यादा लगेंगे, 3 वो लगती हैं, 3 चतुर्युगी बनाने में लगती हैं, 3 चतुर्युगी बिगाड़ने में लगती है, तो इतना तो सर्वशक्तिमान को लगेगा, तो जहां से आया था धीरे धीरे वहीं जाके चला जाएगा। तो ये क्यों, विनाश भी तो उसी क्रम से होगा ना, जिस क्रम से निर्माण हुआ वही अंत में परमाणु में ही पहुंचना है, क्यों 94 जो है ना, हाँ तो 994 जो चतुर्युगी बनती हैं महर्षि दयानंद जी के अनुसार वो तभी घटेंगे यदि 3 निर्माण में और 3 विनाश में मानी जाए, अन्यथा वो गणना पूरी नहीं बट घटेगी। चलो जी वैसे तो इसमें है ऐसा, फिर भी अगर लगते वो ईश्वर का कार्य है वो तो ईश्वर कर लेगा, हम तो केवल गणना मात्र कर सकते हैं, वो तो हमारी पहुंच वहां तक तो वैसे नहीं है अभी, किंतु विनाश कहाँ से प्रारंभ होगा, ये है कि जहाँ से परमाणुओं का वापसी गमन प्रारंभ होगा, मतलब स्थूल से सूक्ष्मता की तरफ चलेंगे, पहले क्या था विकास में सूक्ष्म से स्थूल आए थे, अब जहाँ से जिस दिन से वो प्रारंभ होगा ये पहली क्रिया के आदि को कहा जाएगा, और अंतिम क्रिया क्या होगी, प्रकृति में लौट जाना। अब हमारी अंतिम क्रिया क्या होगी, जैसे विनाश तो प्रारंभ हो जाता है, जैसे अभी समझ ले कि बाबा जी हैं 20 साल में अभी ह्रास प्रारंभ हो रहा है, विनाश तो कि जब व्यक्ति भयंकर रोगी हो जाए लगे कि भी डॉक्टर ने भी कह दिया कि 2-4 दिन में जाने वाला है, तो वो विनाश की पहली क्रिया प्रारंभ होगी समझो, और 2-4-10 दिन महीने में समाप्त हो गया, प्राण निकल गए। प्राणों का संबंध ही क्या था? विकास था। और प्राणों का वियोग क्या है? विनाश है। फिर जाके जला दिया, राख भी नहीं बची, बरसात आई राख भी बह गई और दो चार पीढ़ी में नाम भी समाप्त। यही जीवन का सत्य है। विनश्यति इति अपर भावस्य आदिमाचष्टे न पूर्व भावम आचष्टे न प्रतिषेधति। तो पूर्व भाव का अपक्षेत का न तो निषेध किया है न उसको स्वीकार किया। कोई कहे कि भाई हम तो थोड़ा वहां से प्रारंभ करेंगे तो आप ऐसे कर लीजिए। तो ये छह विकार जीवन का सत्य इन्होंने बताया। तो आज के पाठ में क्या क्या हुआ? शब्द नित्य हैं, अनित्य नहीं है। परमात्मा ने वेद का ज्ञान क्यों दिया? क्योंकि पुरुष की विद्या अनित्य है, इसलिए प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए, प्राप्ति के लिए मंत्र जो है वेद में है। दूसरा, छह विकार होते हैं, इन छह विकार हमारे सब जगह लगभग घट रहे हैं। तो ये क्या है? इन छह विकारों को कहने वाले शब्द भी हैं। इसका यहाँ क्या संबंध है? कि वो चार प्रकार के शब्द हैं, इस छह प्रकार के विकारों को वो ही शब्द भी कहते हैं। अगर आपको विकार को जानना है, उत्पत्ति को जानना है, तो बिना शब्दों के, अब जिसने जायते देखेंगे तो मंत्रों में जहाँ जायते का विनियोग किया है संसार की उत्पत्ति का, तो बिना इन चारों शब्दों के वहाँ भी कुछ भी नहीं है। तो ओम शांति, इतना ही रखते हैं। बाकी कल जो है ये मंत्र आज भी रह गया, क्योंकि वो हम अध्यात्म में चले गए थोड़े, वो भी जरूरी था समझने के लिए। तो कल जो है हम उपसर्ग के जो चीज़ें हैं इस पे हम कर ही देंगे काफ़ी चीज़ों को कल। और ये मंत्र आप लोग व्याकरण लगा के आ जाएं, आपको सबको पता ही है, तो मुझे जल्दी सुविधा हो जाएगी, नहीं तो मुझे तो लगा नहीं है। तो ये मंत्र क्या कहता है, ये सोम क्या है, वायु कहाँ है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, इनका संबंध क्या है और इनसे हमें मिलेगा क्या, और महर्षि दयानंद जी इस मंत्र की क्या व्याख्या कर रहे हैं, हमें क्या समझा रहे हैं, तो हम थोड़ी चर्चा करेंगे। भले ही एक ही मंत्र हो, पूरा इसमें व्याकरण स्वर सिद्धि सहित लगेगा। वैसे तो सभी में तो आगे नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए डेढ़ एक से एक साल का समय चाहिए अगर हर मंत्र में हम करके चलेंगे। और वैसे निरुक्तकार ने उपसर्ग के कोई मंत्र दिए भी नहीं है, किंतु मेरी ये इच्छा है कि आप जिस चीज़ को पढ़ रहे हो कुछ तो जानो। वैसे ऐसे कोई पढ़ते पढ़ाते प्राय नहीं है, वो तो आ इति उपसर्ग है, अर्वांग अर्थ है, अपनी ओर खींचने के अर्थ में है, यथा आगच्छति इत्यादि है, कार्य पूरा हो गया। किंतु हम, मैं चाहता हूँ कि पूरा एक आदमी में तो व्याकरण भी लगाएं पूरा, और बाकी ऋग्वेद से हमें ये तो पता लगे कि ये उपसर्ग कैसे घटते हैं। जब तक हमें यही पता नहीं लगेगा कि ये उपसर्ग घटते कैसे हैं, तो हम इनको घटाएंगे कैसे? फिर मूल वेद से अगर आप 10% भी अर्थ प्रारंभ में करने में सफल हो गए, तो निरुक्त होते होते तो मैं समझता हूँ 50-60 तो पहुँच ही जाएंगे, तो एक बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। फिर आप मूल संगीता लेके घूमेंगे, इतने बड़े भाष्य लेके चलने की अपेक्षा भी नहीं बचेगी। तो वो हमारी स्थिति करेंगे जितना भी 6 महीने में हो सकता है। तो ठीक है जी, आप लोगों का पूरा हो गया। आपको जी कोई कुछ पूछना है तो ऑनलाइन में जो है तो कृपया बताएं, नहीं तो फिर मैं पूछता हूँ थोड़ा। हाँ जी, पर सुनेगा कैसे, क्योंकि वापस आने का तो नहीं है सिस्टम। कोई उपाय करो, कोई ऐसा हेडफोन लाओ कि जिसमें दोनों सिस्टम है एक में ही। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? मैंने हेडफोन बदला है, मुझे उधर से बोल के बताइए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा था आप कुछ कह रहे हैं तो। ओम ओम, अभी भी नहीं आ रही। आर्य राम किशोर जी, कुछ पूछना है? और आचार्य सविता जी को कुछ पूछना है? सुनील जी को, संदीप जी तो कट गए बीच में शायद। सुनाई नहीं दिया? अच्छा ठीक है जी, नमस्ते सभी को। तो ऐसा करते हैं, स्काइपी पे भाई फाइल अपलोड कर दो, इनको सुनाई नहीं दिया। हाँ अभी सुनाई दे रहा है, कुछ गड़बड़ है यार, अभी मैंने हेडफोन बदला है, अभी सुनाई दे रहा है? अभी भी सुनाई नहीं दे रहा।